From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake,
Salt Lake City के Temple Square स्थित सम्मेलन केंद्र से ये अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह का गिरजे का 187वां वार्षिक महासम्मेलन का शनिवार सुबह का सत्र है। इसके वक्ता गिरजे के जनरल अधिकारियों और जनरल पदाधिकारियों में से चुने गए हैं। इस सत्र का संगीत मॉर्मन मंडप गायक मंडली द्वारा होगा। गिरजे के अपने मार्गदर्शियों से सलाह और निर्देश प्राप्त करने के लिए विश्व से सभी स्थानों से गिरजे के सदस्य और पदाधिकारियों एकत्रित हुए हैं। ये प्रसारण बॉनेवल डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया जा रहा है। बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की नकल, रिकॉर्डिंग, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है। प्रथम अध्यक्षता में द्वितीय सलाहकार अध्यक्ष डीटर एफ उगडोर्फ इस सत्र का संचालन करेंगे।
Brothers and sisters, dear friends,
भाइयों और बहनों, प्रिय मित्रों, हम अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे के 187वें वार्षिक महासम्मेलन के शनिवार सुबह के सत्र में आपका स्वागत करते हैं और संसार भर और सदस्य और मित्रों का सम्मेलन में भाग लेने के लिए गर्म जोशी से स्वागत करते हैं।
And best wishes to all of you. Our dear prophet, President Thomas S. Monson, has asked that
अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन ने कहा है कि मैं इस सत्र का संचालन करूं। हम जनरल अधिकारियों और पदाधिकारियों का आभार प्रकट करते हैं जो पूरे महासम्मेलन के दौरान उपस्थित रहेंगे। इस सत्र का संगीत मैक विलबर्ग और रायन मर्फी के निर्देशन में मॉर्मन मंडप गायक मंडली द्वारा होगा। क्ले क्रिस्टियनसन और रिचर्ड एलियट ऑर्गन बजाएंगे। गायक मंडली ने द मॉर्निंग ब्रेक्स गाकर इस सभा को आरंभ किया है और अब लेट ज़ायन इन अ ब्यूटी राइज गाएगी। इसके बाद आरंभिक प्रार्थना सत्र के एल्डर टेरेंस एम विंसन के द्वारा की जाएगी, जिसके बाद गायक मंडली डू व्हाट इज राइट गाएगी।
Thank you. our Father in heaven.
हे स्वर्गीय पिता, हम आपके ग्रेटफुल हैं जो आपने ब्लेसिंग हमें दी है. पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं जो दया और न्याय आपने हमारे ऊपर किए हैं. पिता, हमें अपनी पवित्र आत्मा से आशीषित करें जब हम ये सुने पढ़ें. हम आपसे आग्रह करते हैं कि आशीषित करें इस मीटिंग को और उन सबको जो इसे सुन रहे हैं. हमें आपके प्रोत्साहन और उम्मीद की जरूरत है, शांति और प्यार की जरूरत है. पिता, हम आपके पुत्र यीशु मसीह के नाम में ये प्रार्थना करते हैं, आमीन.
Thank you.
Thank you, choir. We will now be pleased to hear from President Henry B. Eyring.
अब हम प्रथम अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार अध्यक्ष हेनरी बी एयरिंग को सुनेंगे. उनके पश्चात युवकों की जनरल अध्यक्षता में द्वितीय सलाहकार भाई एम जोसेफ ब्रॉ बोलेंगे. फिर 70 के एल्डर वेदरफोर्ड टी क्लिंटन हमें संबोधित करेंगे. प्रेजेंट आयरिंग.
मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं खुशी मनाता हूं कि मैं महासम्मेलन के इस सभा में आपके साथ हूं. मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं. महासम्मेलन हमेशा से अंतिम दिनों के संते के लिए इकट्ठित होने का समय है. बहुत दिन पहले गिरजा इतना भारी हो गया था कि शारीरिक रूप से एक जगह इकट्ठा होना मुमकिन नहीं था, मगर प्रभु ने तरीके उपलब्ध किए कि हमें महासम्मेलन के आशीर्वाद जहाँ हम रहते हैं वहाँ मिल सके. भले ही ये बढ़िया बात है कि संत इस बड़े से सम्मेलन केंद्र में मिलते हैं, हम जो मंच पर है कल्पना कर सकते हैं उन मिलियनों लोगों को जो दुनिया के हर भाग में सम्मेलन को देखने और सुनने के लिए इकट्ठित हुए हैं. आप में से कई लोग अपने परिवारों के साथ, कुछ लोग दोस्तों या गिरजाघर सदस्यों के साथ हैं. जहाँ भी तुम हो और जैसे भी तुम मेरे आवाज़ को सुन रहे हो, कृपया ये जानिए कि भले ही तुम खुद यहाँ नहीं हो, हम आपके आत्मा को उपस्थिति को महसूस कर रहे हैं. हम आशा करते हैं कि आप हमसे जुड़े हैं, कि तुम उस धार्मिक शक्ति को महसूस करोगे जो आता है जब विश्वासियों का दल यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं. मैं आज तुमसे एक और तरह की इकट्ठा होने के बारे में कहना चाहता हूँ. यह सिर्फ हर 6 महीने पर नहीं होता महासम्मेलन की तरह. इसके बजाय गिरजाघर के पुनर्स्थापना के शुरुआत के समय से होता रहा है और अभी हाल के वर्षों में फुर्ती से आगे बढ़ रहा है. मैं परमेश्वर के परिवार को इकट्ठा होने के बारे में कह रहा हूँ. इस इकट्ठा होने के बारे में बतलाने के लिए बेहतर होगा पैदाइशी से पहले शुरुआत करें, धर्मशास्त्र में लिखा शुरुआत से पहले. उस समय हम स्वर्ग के पिता के साथ उनके आत्मिक बच्चे की तरह रहते थे. ये धरती पर जिस जिए उस हर इंसान के बारे में सच है. समझो कि ये नाम भाई और बहन सिर्फ कहने में ही अच्छे नहीं, ये हमारे दुलारे लगते हैं. हमें ये एक आनंद सच्चाई बतलाता है. परमेश्वर सभी मनुष्य वंश का वास्तव में पिता है. हम सब उनके आनंद परिवार का हिस्सा है. उनकी वो हमें एक संपूर्ण पिता के प्यार जैसा प्रेम करता है. वो चाहता है कि हम प्रकृति उनके और उनकी तरह बन जाए. उसने ये योजना तय किया जिसके द्वारा हम धरती पर आएंगे, परिवारों में और अनुभव से गुजरेंगे, जिससे हमें तैयार किया जाएगा उनके पास लौटने के लिए उनकी तरह. इस योजना का मुख्य तत्व का कि यीशु मसीह खुद को कुर्बान करेगा हमें पाप और मृत्यु से छुड़ाने के लिए. हमारा कार्य उस योजना में है उद्धारकर्ता की कुर्बानी को अपनाना, सुसमाचार के कानून और धर्मविधियों को पालन करने से. तुमने और मैंने ये योजना स्वीकार किया, पर सच में हमने खुशी मनाया. भले ही उसका मतलब होगा हमारे पिता की उपस्थिति छोड़ना और जो उनके साथ अनुभव किया और भूल जाना, परंतु हमें यहाँ बिना कोई दिव्य ज्ञान के नहीं भेजा गया. हम सबको परमेश्वर के ज्ञान के एक हिस्सा दिया गया है जिससे मसीह का प्रकाश कहा जाता है, ताकि हम अच्छाई और बुराई, सही और गलत के फैसला कर सके. इसी कारण जो लोग पिता के योजना का काम कम के या कुछ भी ज्ञान नहीं रखते उन्हें अपने दिल में महसूस होता है कि कुछ कार्य सच्चे और नैतिक है जबकि अन्य कार्य नहीं है। हम बच्चों को पालते हैं समय खास तौर से सही और गलत को एहसास करते हैं। लगभग सब माता पिता को आम रूप से इच्छा होती है अपने बच्चों को नैतिक आदर्श सिखलाने की। ये स्वर्ग पिता के योजना का चमत्कारिक भाग है। वो चाहता है कि उनके बच्चे धरती पर आए स्वर्ग के आनंद परिवारों के आकर आकर परिवार केंद्र मूल उन यूनिट है स्वर्ग के राज्य में, और इसलिए वो चाहता है कि वो भी धरती पर मूल यूनिट रहे। भले ही धरती के परिवार उतने संपूर्ण नहीं होते, वो परमेश्वर के बच्चों को दुनिया में आकर स्वागत पाने के सबसे बेहतर मौके देते हैं। परिवार नैतिक आदर्शों और सच्चे सिद्धांत को संभालने और आगे सिखाने का सबसे बेहतर तरीका है। परमेश्वर के बच्चों का एक बहुत कम संख्या इस जीवन में परमेश्वर की योजना का संपूर्ण ज्ञान पाते हैं। प्रिस्टुड के धर्म विधियों और वचनों के साथ जो उद्धारकर्ता के प्रेषित की शक्ति से हमारे जीवन में ला सकता है। जिनके सबसे अच्छे माता पिता हैं वो विश्वपूर्ण ढंग से ज्ञान से अनुसार जिएंगे, मगर कभी यीशु मसीह के बारे में सुनेंगे नहीं या उनके नाम पे बपतिस्मा नहीं पाएंगे। दुनिया के इतिहास में ये हमारे सैकड़ों भाई और बहन हैं। कुछ लोग इसी उन अनुचित सुनेंगे, वो ये सबूत भी मांग लेंगे कि कोई योजना नहीं है, कोई खास आवश्यकताएं नहीं है उद्धारकर्ता के लिए। ये महसूस करते हैं कि एक सच्चा प्रेमी परमेश्वर ऐसा योजना नहीं बनाएगा जो उनके बच्चों के सिर्फ एक छोटे संख्यों को नहीं उपलब्ध होगा। अन्य लोग विश्वास करेंगे कि परमेश्वर ने पहले के तय कर लिया था होगा उनके कौन से बच्चे उनके पास वापस लौटेंगे, मगर तुम और मैं जानता हूं कि भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ ने जरिए पुष्णपातित किया सच्चाइयों के कारण। परमेश्वर का योजना इससे ज्यादा प्रेमी और सुचित है। हमारे स्वर्ग पिता उत्तेजित है अपने पूरे परिवार को इकट्ठा करने के लिए। सदियों पहले भविष्यवक्ता मलकाय ने कहा कि किसी आने वाले समय में परमेश्वर इलाइजा को भेजेगा, पिताओं के हृदय को बच्चे के ओर मोड़ने के लिए और बच्चों के हृदय को पिताओं पर। ये भविष्यवाणी इतनी आवश्यक थी, उद्धारकर्ता ने इसे दोहराया जब वो अमेरिका गया था अपने पूर्ण जीवित होने के बाद। और जब फरिश्ता मोरनाय भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ से मिला, उसने भी इलाइजा के हृदय पिताओं और बच्चों का भविष्यवाणी दोहराया। आज अप्रैल 1 है। आज से 2 दिन बाद अप्रैल 181 वर्ष हो जाएगा जब से मलिकाय का भविष्यवाणी पूरा हुआ था। उस दिन पर इलाइजा आया था और उसने जोसेफ स्मिथ को प्रिस्टुड की शक्ति दी परिवारों को आनंद तक बढ़ने के लिए। उस दिन से आज तक लोगों का अपना परिवार इतिहास जांचने का संख्या रफ्तार से बढ़ता है। इतना ज्यादा तादाद में लोग अपने परिवारों को जोड़ने के लिए मानो खींचने चले जा रहे हैं। जीनियोलॉजी के लाइब्रेरियों संबंधित स्थितियों और टेक्नोलॉजियों दुनिया भर में उभर आई है। इंटरनेट की शक्ति द्वारा परिवार वाले एक साथ मिलकर तेजी से और अच्छी तरह से परिवार जांच पड़ताल जैसा पहले नहीं मुमकिन था। ऐसा सब क्यों हो रहा है? इसका सबसे बेहतर नाम हो हम दे सकते हैं, वो है इलाइजा का आत्मा। हम इसे भविष्यवाणी की पूर्ति भी कह सकते हैं। मैं गवाही देता हूं कि इलाइजा जरूर आया था बच्चों के हृदय तुम्हारा और मेरा हमारे पिताओं के ओर मुड़ाने के लिए, हमारे परिवारों के जहाँ जो लगाव तुम अपने परिवारों से महसूस करते हो वो उसी भविष्यवाणी की पूर्ति है। ये तुम्हारे मन की गहराई में है कि तुम कौन हो, मगर ये सिर्फ उन पूर्वजों से पाए डीएनए से नहीं ताल्लुक रखता। उद्धारकर्ता के लिए जब तुम प्रेरणा के अनुसार अपने परिवार इतिहास सीखोगे, तुम शायद देखोगे कि कोई दूर का रिश्तेदार और तुम्हारे चेहरा तुम्हारा किताब की दिलचस्पी या तुम्हारे गाने का हर एक जैसा है। ये बहुत दिलचस्पी और गहरी विचार उतना कर सकता है, पर अगर तुम्हारा काम रुक जाएगा तुम देखोगे कि तुम कुछ गायब है। ऐसा है क्योंकि परमेश्वर के परिवार को इकट्ठा करने के लिए सिर्फ गहरी एहसास ज्यादा चाहिए। आपके कई परिवारों ने उन धर्म विधियों को नहीं हासिल किया था, पर परमेश्वर के जरिए तुम कर सकते हो। अब परमेश्वर जानता था कि तुम प्रेम से अपने पूर्वजों के करीब जाओगे और कि टेक्नोलॉजी के साथ तुम ऐसा कर सकोगे और कि मंदिर को तुम जान पाओगे और ये सब कार्य को आगे कर सकोगे। वास्तव में हम सब के पास काफ़ी ज़रूरी और आवश्यक जिम्मेदारियां हैं जिसके लिए हमारा ध्यान और समय चाहिए। प्रभु के चाहे कुछ चीज़ों को हम नहीं कर पाते। सौभाग्य से प्रभु एक तरीके देता है हमें साहस और संतोष देने के लिए हमारे सब सेवा में, परिवार इतिहास सेवा में भी हम उनके कहे कार्य को करने की शक्ति पाते हैं कि इस विश्वास के जरिए कि प्रभु कोई आज्ञा नहीं देता सिवाय वो एक रास्ता बनाता है कि हम उसे पा सके। मैं अनुभव से जानता हूं कि ये सच है। कई साल पहले जब मैं यूनिवर्सिटी छात्र था, मैं दुनिया के सबसे बड़े कंप्यूटर बनाने वाले एक कंपनी में काम कर रहे थे आदमी से मिला। ये कंप्यूटिंग के शुरुआत के दिनों में था और ऐसा था कि इस कंपनी ने हमारे गिरजाघर को कंप्यूटर बेचने आया था। उसको देख के मैं बता सकता था कि इस बेचने वाले का कोई धर्म नहीं था। फिर भी उसने आश्चर्य और अचंभ से कहा, इस गिरजा में वो लोग जीनियोलॉजी नामक काम कर रहे थे, मरे हुए लोगों के नाम को ढूंढने में, अपने परिवारों को पहचानने में। लोग इस फाइल कैबिनेट से दूसरे में जा रहे थे, छोटे छोटे कार्ड में जानकारी ढूंढने के लिए, कि जब मैंने उनके बारे में कोशिश को देखा मैं जान पाया कि क्यों कंप्यूटर बनाया गया था। हाँ, कुछ हद तक वो सही था। कंप्यूटर परिवार इतिहास कार्य के भविष्य का जरूरी भाग होगा। सिर्फ उसके बेचने जाने वाले कंप्यूटर नहीं, गिरजाघर के एक प्रेरित नेता ने उसके कंप्यूटर को नहीं खरीदना चाहा। गिरजाघर को उस टेक्नोलॉजी का इंतजार करना पड़ा था जिसको बनाने की कल्पना अभी नहीं हुआ था। मगर मैंने उस दिन से अब तक के लिए कई सालों में सीखा कि है कि सबसे बेहतर टेक्नोलॉजी भी स्वर्ग से आए प्रकरण की जगह नहीं ले पाएगा, जैसा गिरजाघर नेता ने पाया था। ये एक धार्मिक कार्य है और प्रभु इसका निर्देशन अपने पवित्र आत्मा द्वारा करता है। कुछ ही हफ्ते पहले मैं अपने परिवार इतिहास पर एक कंसल्टेंट के साथ काम कर रहा था और फोन पर एक और सहायक के साथ था। मेरे आगे कंप्यूटर के स्क्रीन पर एक समस्या थी जिसे मैं मरणशील शक्ति से नहीं कर सकता था। मैंने दो नाम देखे जो मुझे टेक्नोलॉजी के आश्चर्य से भेजा गया था, उस लोगों के जो एक मंदिर धर्मती का इंतजार कर रहे थे। वो नाम अलग अलग थे, मुझे एक उसमें से एक चुनना था। मेरा काम था सच्चाई तय करना। मेरे दो सहायक मान गए कि मुझे चुनना है और जानते कि मैं सच खोज लूंगा। कंप्यूटर अपने सब शक्ति और जानकारी के साथ ने मुझे इन नामों को स्क्रीन पर देखने का आशीर्वाद दिया, और फिर प्रार्थना के साथ मैंने जान पाया कि किस नाम को मुझे चुनना है, और ये सिर्फ प्रभु से मिलता है। हम नहीं जानते परमेश्वर क्या बढ़िया निर्माण करने के लिए लोगों को प्रेरित करेगा, ताकि उनके परिवार को इकट्ठा करने के लिए उनके काम में मदद मिले, पर चाहे जो भी बढ़िया निर्माण आए उसके लिए जरूरी होगी कि तुम्हारे और मेरे जैसा लोग आत्मा का सहारा लेंगे। इससे हमें अचंभा नहीं होना चाहिए, वैसे भी ये परमेश्वर के प्रिय पुत्र और पुत्रियां है। हाल के सालों में गिरजाघर के युवा ने इलाइजा के आत्मा को प्रेरणा तरीके से सुना, और मैं उनमें से कई अपना खुद का लिमिटेड यीशु मंदिर सिफारिश रखते हुए अक्सर इस्तेमाल करते रहे। मंदिरों के बपतिस्मा का काम पहले से व्यस्त रहता है। युवा को अपने ही पूर्वजों के नाम मंदिर लाने का निराला पर सुखद मौका मिला रहा था। इसके साथ कई युवकों ने जाना कि परिवार इतिहास खोज और मंदिर कार्य करने में समय बिताने और उद्धार की योजना का उनकी गवाही गहरी हुई है। इससे उनके जीवन में आत्मा का प्रभाव बढ़ा, इससे वो अपने परिवार और प्रभु के करीब आया। उन्होंने सीखा है कि ये काम सिर्फ मृत्यु को नहीं बचाता है, पर हम सबको। युवाओं ने सीखा है और अब उनके माता पिताओं को ये सीखना है। अब आत्मिक दुनिया में कई लोग ने बपतिस्मा स्वीकार कर लिया है युवा के मदद से, और वो अन्य धर्म विधियों का इंतजार कर रहे हैं जो सिर्फ मंदिर से मिलेगा। स्वर्ग के पिता के परिवार को इकट्ठा करना सिर्फ युवाओं का काम नहीं है, लेकिन हम सभी का काम है। ये सब के लिए है। ये हमारे पीढ़ी का काम है, जो देवदूत पौल ने कहा, समयों के पूरे होने का समय, जब परमेश्वर स्वर्ग और पृथ्वी के सब चीजों को मसीह में इकट्ठा करेगा, खुद में भी। ये सब परमेश्वर के प्रिय पुत्र यीशु मसीह के प्रेषित का कार्य से मुमकिन हुआ है। उन्हीं के जरिए हमारे परिवार से के सदस्य को, जो कभी कभी दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो जाएंगे, क्योंकि वो ही हमारा मेल है जिसने दोनों को एक कर लिया और अलग करने वाले दीवार को जो बीच में थी गिरा दिया। तुमने ये महसूस किया, और मैंने भी, जब हम तुम एक पूर्वज को देखते हैं समय बढ़ते हुए, प्रेम अनुभव किया है। तुमने मंदिर में महसूस किया है जब एक कार्ड लिखा नाम का ज्यादा अहमियत रखता था, और तुम इसे निराशदार ना कर पाते हो। मैं गवाही देता हूँ कि पिता परमेश्वर चाहता है कि उनके बच्चे घर लौटे परिवारों और महिमा में। उद्धारकर्ता जीवित है, वो इस कार्य की अगुवाई करता है, और वो हमारा देखरेख करता है, और वो तुम्हें धन्यवाद देता है कि तुम उनके कार्य में जुटे हुए हो, उनके परिवार को मिलाने के लिए। और ये सब मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूँ, आमीन।
One of Heavenly Father's most beloved tools in guiding his children is righteous grandparents.
अपने बच्चों के मार्गदर्शन के लिए उसके अति प्रिय साधनों में धर्मी दादा दादी नाना नानी हैं। मेरे पिता की माँ इसी तरह की महिला थी। एक अवसर पर जब मैं याद करने के लिए बहुत छोटा था, मेरे पिता मुझे अनुशासित कर रहे थे। अनुशासित करने के तरीकों को देखकर मेरी दादी ने कहा, मोंटी ने तुम उसके साथ अधिक कठोरता क्यों कर रहे हो? मेरे पिता ने जवाब दिया, माँ मैं अपने बच्चों को जैसा मैं चाहता हूँ वैसा ठीक करूँगा। और मेरी माँ समझदारी से कोमलता से कहा, और ऐसा ही मैं करूँगा। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उस दिन मेरे पिता ने अपनी माँ की समझदारी को सुना। मार्गदर्शन करने के विषय में सोचता हूँ। हम स्तुति गीत आई एम अ चाइल्ड ऑफ गॉड के विषय में सोचते हैं, जिसे हम साथ जानते हैं, पसंद करते हैं। इसके कोरस में हम इन शब्दों को पाते हैं, मेरा नेतृत्व करो और मुझे मार्ग दिखाओ, मेरे साथ चलो, मार्ग खोजने में मेरी मदद करो। अभी तक मैं समझता था कि इस कोरस में माता पिता के लिए दिव्य दर्शन है। इन शब्दों में मनन करते हुए मुझे महसूस हुआ कि जबकि इनमें दिव्य दर्शन है, लेकिन इसमें से भी अधिक गहरा में मौजूद है। अध्यक्ष डेट ऑफ ऑक्वर्ड ने समझाया था कि स्वर्ग में हमारा पिता उसकी संतान की आवश्यकताओं को किसी अन्य से बेहतर जानता है। ये उसका कार्य और महिमा है कि उसके पास वापस लौटने के मार्ग में हमारी मदद के लिए हमें आश्चर्यजनक संसारिक और आत्म स्रोतों को देते हुए हर मोड़ पर हमारी मदद करे। इन शब्दों में सुने, मुझे और आपको क्या चाहिए? स्वर्गीय पिता किसी अन्य से बेहतर जानता है। इसके परिणाम स्वरूप उसने हम सब के लिए एक व्यक्तिगत देखभाल पैकेज विकसित किया है। इसके बहुत से हिस्से हैं जिसमें हमें शामिल है उसके पवित्र आत्मा, आज्ञाएं, धर्मशास्त्र, प्रार्थना, भविष्यवक्ता, प्रेरित माता पिता, दादा दादी, नाना नानी और अन्य बहुत से। ये सब एक दिन उसके साथ रहने के लिए लौटने में हमारी मदद करते हैं। आज मैं इस देखभाल पैकेज के कुछ हिस्सों को बांटना चाहूंगा जिन्होंने मुझे समझाया कि प्रिय पिता नेतृत्व मार्गदर्शन और मेरे पिता के साथ चलता है। मेरी माता पिता, मेरी प्रार्थना है कि आप में से प्रत्येक अपने अनुभवों में समझेगा कि स्वर्गीय पिता नेतृत्व करता है। स्वर्गीय पिता की आज्ञाएं देखभाल पैकेज के महत्वपूर्ण हिस्से हैं। आलमा ने कहा था कि दृष्टि कभी भी प्रसन्न नहीं थी। सुधार करने के प्यार के बिना अनुचित व्यवहार को ठहराना अनुभूति है और इस आम धारणा की पुष्टि करता है कि अपने भविष्यवक्ता द्वारा स्वर्गीय पिता निरंतर हमें याद दिलाता है कि धार्मिकता ही प्रसन्नता है। किंग बेंजामिन ने उदाहरण के लिए के सिखाया था कि स्वर्गीय पिता चाहता है कि जैसे वह आज्ञा देता है तुम वैसा ही करो और यदि तुम वैसा ही करते हो तो वह शीघ्र ही तुम्हें आशीष देता है। इसी तरह की चेतावनी एक अन्य स्तुति गीत से मिलती है, आज्ञाओं का पालन करो, आज्ञा का पालन करो, इसी में सुरक्षा है, इसी में शांति है, वह आशीष देगा। अपने 14वें जन्मदिन तक मैं अपने से कुछ आशीषों को जान चुका था। मैंने अपने माता पिता की ओर से अलग व्यवहार देखा जो मैंने देखा था कि उस पर ध्यान देते हुए मैंने पूछा, क्या हम मिशन पर जा रहे हैं? हमारी माँ ने अचंभे से देखा और कहा। बाद में परिवार परिषद में मुझे और मेरे भाइयों को पता चला कि हमारे माता पिता को एक मिशन की अध्यक्षा के लिए नियुक्त किया गया है। हम वियो में एक सुंदर फार्म में रहते थे। मेरी दृष्टि में जीवन परिपूर्ण था। मैं स्कूल से जाता था, अपने काम करता था और अपने कुत्ते के साथ शिकार करने, मछली पकड़ने या घूमने फिरने में निकल जाता था। नियुक्ति के विषय में जानने के लिए कुछ समय बाद मैंने महसूस किया कि मुझे अपने कुत्ते ब्लू को छोड़ना पड़ेगा। मैंने अपने पिता का विरोध किया या पूछा कि मैं ब्लू को क्या करूं। जो परमेश्वर चाहता था मैंने उसे अनुचित ठहराने के लिए जोर डाला। मैं इस जवाब को कभी नहीं भूलूंगा। उन्होंने कहा था, मैं नहीं जानता, वह शायद हमारे साथ नहीं जा सकता, इसलिए बेहतर होगा कि तुम परमेश्वर से पूछो। मुझे इसका जवाब की आशा थी। मैंने मॉर्मन की पुस्तक पढ़ना आरंभ किया था। मैंने ये जानने के लिए गंभीरता से प्रार्थना की कि मुझे अपने कुत्ते को छोड़ना पड़ेगा। मुझे जवाब उसी क्षण में मिला। असल में एक विषय में मेरे मन में बार बार आता रहा कि अपने माता पिता पर बोझ मत डालो। मैं जानता था कि स्वर्गीय पिता क्या चाहता है। इस ज्ञान ने अपने कुत्ते को छोड़ने के दुख को कम नहीं किया। हालांकि इस छोटे से बलिदान के द्वारा मेरा हृदय नरम हुआ और स्वर्गीय पिता की इच्छा को जानने में शांति मिली। धर्मशास्त्र, प्रार्थना, पवित्र आत्मा और योग्य संसारिक पिता जिसने अपने बच्चों के लिए मुख्य सुसमाचार शिक्षक की अपनी भूमिका को पूरा किया था, मैं उसे आशीष और प्रसन्नता के लिए मैं स्वर्गीय पिता को धन्यवाद देता हूँ। ये मेरा नेतृत्व व मार्ग दिखाती रही है और मार्ग दिखाने के लिए मेरे सांसद है। अध्यक्ष पैकर ने कहा था, धार्मिक प्रेरणा प्राप्त करते हैं। हम में से प्रत्येक हमारे मार्गदर्शक को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए स्वतंत्र होता है, लेकिन अपने की सलाह अपमान कभी ना करें। ये पुरुष प्रभु का प्रतिनिधित्व करने का प्रयास करते हैं, चाहे आप युवा हो या वृद्ध। जब शैतान चाहता है कि हम सोचे सब नष्ट हो चुका है, धर्मशास्त्र हमें मार्ग दिखाने के लिए उपस्थित करता है। अन्य धर्म शास्त्रों के साथ बात करते समय मुझे अवज्ञा या अभाग्य गलतियों की स्वीकृति को कष्ट करने के संबंध में एक सामान्य प्रेरणा पता चलता है। हम सबको सीखने के लिए हमें क्या करना चाहिए? यीशु मसीह ने परिपूर्ण उदाहरण देकर मार्ग दिखाया था जिसका हमें अनुकरण करना चाहिए। वह बाएं फैलाकर हमें अपने पीछे आने का अनुरोध करता है, और जब असफलता होते हैं, क्योंकि हम सब होते हैं, तब वह हमारे स्मरण करता है, क्योंकि देखो मैं परमेश्वर ने इन बातों को सिखाया है ताकि हमें आगे सहना ना पड़े ना ही पछताना पड़े। कितना शानदार उपहार है, पश्चाताप दंड नहीं है, यह एक मौका है जो हमारे नेतृत्व करता है और मार्ग दिखाता है। इसमें आश्चर्य नहीं, धर्मशास्त्र बताते हैं कि हम पश्चाताप करने के सिवाय कुछ नहीं करना चाहते। स्वर्गीय पिता के पास बहुत से स्रोत हैं, लेकिन अक्सर हमारी मदद करने के लिए वह अन्य व्यक्तियों का उपयोग करता है। वह प्रतिदिन हमें किसी जरूरतमंद का नेतृत्व करने, मार्ग दिखाने और साथ चलने के का मौका देता है। हमें उद्धारकर्ता के उदाहरण का अनुकरण करना चाहिए। हमें स्वर्गीय पिता के कार्य में लगे रहना चाहिए। युवकों की महाध्यक्षता के रूप में हम जानते हैं कि युवा आशीषित होते हैं जब उनके पास ऐसे माता पिता और मार्गदर्शक होते हैं जो स्वर्गीय पिता के साथ नेतृत्व करते हैं। तीन सिद्धांतों को दूसरों के लिए स्वर्गीय पिता की देखभाल पैकेज का हिस्सा बनाने में हमारी मदद करेगा। इस प्रकार, पहला, युवा एक साथ रहे। अध्यक्ष हेनरी बी आयरन ने इस बात को पर जोर दिया था, कुछ बातें जो हम कर सकते हैं अतिरिक्त महत्वपूर्ण है। अपनी शिक्षा में सिद्धांतों को सिखाने में शब्दों के प्रयोग में से अधिक शक्तिशाली उस सिद्धांत का पालन करने के हमारे उदाहरण होंगे। युवाओं के नेतृत्व के लिए उनके साथ होने की आवश्यकता होती है। उनके प्रति समर्पण समय प्रेम की एक ऐसी अभिव्यक्ति है जो हमारा समय और उदाहरण के द्वारा सिखाना संभव करती है। दूसरा, वास्तव में युवा को मार्ग दिखाने के लिए हमें उन्हें स्वर्ग में मदद करनी चाहिए। ऐसा समय आवश्यक आता है जब हमें से प्रत्येक को अकेला खड़ा होना पड़ता है। केवल भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में ऐसे समय होंगे जब मार्गदर्शन की आशीषें बहुत दूर या नहीं होती है। कष्ट के समय एल्डर ने वादा किया है कि अपने अनुभव को और आपकी आज्ञाकारिता सटीक होनी चाहिए जब तक विश्वास में अटल रहते हैं। अपनी आवश्यकता के अनुसार से मांगते हुए तो परमेश्वर जवाब देगा। जब आप कार्य देखभाल करते हैं तो वह आपको समर्थन देगा। अपने स्वयं के साथ मैं यहाँ हूँ। ऐसे एक समय पर मैंने एक कठिन समस्या के समाधान के लिए स्वर्गीय पिता की सलाह को एक साल से अधिक निरंतर और हृदय से प्रार्थना की थी। मैं अच्छी तरह से जानता था कि स्वर्गीय पिता सभी ईमानदार प्रार्थनाओं का जवाब देता है, और फिर भी एक दिन मैं इतना हताश हो गया कि मैं इस प्रश्न के साथ मंदिर पहुंचा था। स्वर्गीय पिता, क्या आप सच में चिंता करते हैं? मैं लोगन यूटा मंदिर के प्रत्यक्ष कक्ष में बैठा हुआ था। उस दिन मंदिर अध्यक्ष वेगन जे फर्दरस्टोन परिवार के नजदीक मित्र को कक्ष में आते देख मुझे आश्चर्य हुआ। वह समूह के समक्ष खड़े हुए और हम सबका स्वागत किया। जब उन्होंने मंदिर श्रोताओं के बीच मुझे देखा तो उन्होंने बोला, मेरी आंखों में देखा और कहा, भाई ब्रूक, आज मैं मंदिर में आपको देखकर अच्छा लगा। स्वर्गीय पिता सच में प्रत्येक बच्चे की प्रार्थना सुनते हैं और जवाब देते हैं। इसके एक बच्चे के रूप में मैं जानता हूं कि मेरी प्रार्थनाओं का उत्तर प्रभु के समय में आया था, और उस अनुभव के द्वारा मैं अपने पहले ज्यादा समझ हम परमेश्वर के बच्चे हैं, और उन्होंने हमें ये यहाँ भेजा है ताकि हमें सब उसकी उपस्थिति को महसूस कर सके और उसके साथ वापस जा सके। मैं गवाही देता हूँ कि स्वर्गीय पिता अवश्य ही हमारे नेतृत्व करते हैं, हमें मार्ग दिखाते हैं और हमारे साथ चलते हैं। हम जब उनके अनुसार उनके कार्य को करते हैं तो वे हमें भविष्यवक्ताओं के द्वारा हमें समझाते हैं और हमें संदेश देते हैं। और मैं ये सब कहता हूँ अपने प्रभु यीशु मसीह के नाम से।
Early in my training as a physician, I had the privilege of helping a young mother deliver her first child. She was calm, focused, and happy. When the baby was delivered, I handed the precious newborn to her. With tears of happiness streaming down her face, she took that brand new baby into her arms and examined him from head to toe. She held him close and loved him as only a mother can. It was a privilege to be in that room with her. Such was the beginning of life for each of us. Yet, was our birth truly the beginning? The world sees birth and death.
इस तरह हम में से प्रत्येक के लिए जीवन की शुरुआत थी फिर भी क्या हमारा जन्म वास्तव में शुरुआत था संसार जन्म और मृत्यु और शुरुआत और के रूप में देखती है लेकिन परमेश्वर की पवित्र योजना के कारण हम जानते हैं कि जन्म और मृत्यु वास्तव में हमारे स्वर्गीय पिता के साथ अनंत जीवन के यात्रा पर केवल मील के पत्थर हैं वह पिता की योजना का अनिवार्य हिस्सा है पवित्र क्षण जहां मनुष्य जाती है और स्वर्ग एक दूसरे को आर पार करते हैं आज मैं गवाही देता हूं हमारे पिता की शानदार योजना की उन सब पर विचार करते हुए जो मैंने ध्यान देते हुए जन्म और मृत्यु के बारे में अपने मेडिकल अभ्यास के वर्षों और गिरजाघर की सेवा में सीखी है हमारे जन्म से पहले हम परमेश्वर के साथ रहते थे हमारी आत्माओं के पिता पृथ्वी पर हम सब सचमुच उनके परिवार में भाई और बहन हैं और हम में से प्रत्येक उनके लिए बहुमूल्य हैं हम उनके साथ असीमित समय तक अपने नश्वर जीवन से पहले रहे हैं सीखते हुए चुनाव करते हुए और तैयारी करते हुए क्योंकि स्वर्गीय पिता हमें प्रेम करते हैं वह चाहते हैं कि हम हमें सबसे बड़ा उपहार दें जो वह दे सकते हैं अनंत जीवन का उपहार वह केवल हमें यह उपहार नहीं दे सकते हमें यह उन्हें और उनके मार्गों को चुनकर ही प्राप्त करना था यह आवश्यक था कि हम उनकी उपस्थिति छोड़ दें और विश्वास विकास और बनने की एक अद्भुत और चुनौतीपूर्ण यात्रा शुरू करें हमारे पिता ने जो यात्रा हमारे लिए तैयार की है उसे मुक्ति की योजना या खुशी की योजना कहते हैं एक महान पूर्व नाश्वर परिषद में हमारे पिता ने हमें अपनी योजना के बारे में बताया था जब हमने उसे समझा तब हम इतने खुश हुए कि हम आनंद से चिल्लाए और सुबह के सितारों ने एक साथ होकर गाया यह योजना तीन महान स्तंभों पर बनाई गई है अनंत काल के स्तंभ पहला स्तंभ पृथ्वी की रचना है हमारे नश्वर जीवन की स्थापना दूसरा स्तंभ हमारे प्रथम संसारिक माता पिता आदम और हवा का पतन हमें कुछ अद्भुत चीजें पतन के कारण दी गई हैं हम पैदा होने और प्राकृतिक शरीर प्राप्त करने में सक्षम थे मैं अपनी माँ का हमेशा कृतज्ञ रहूंगा मुझे और मेरे भाइयों को इस संसार में लाने के लिए और हमें परमेश्वर के विषय में सिखाने के लिए परमेश्वर ने हमें नैतिक चुनाव दिया अपने लिए चुनने और अभिनय करने की क्षमता और विशेष अधिकार भी दिया गया है हमें अच्छे से चुनने के लिए स्वर्गीय पिता ने हमें आज्ञाएं दी हैं। प्रत्येक दिन जैसे ही हम उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं हम परमेश्वर को सिखाते हैं कि हम उन्हें प्रेम करते हैं और वह हमारे जीवन को आशीष देते हैं यह जानते हुए कि हम हमेशा अच्छे चुनाव नहीं करेंगे या दूसरे शब्दों में पाप पिता ने हमें तीसरा स्तंभ दिया उद्धारकर्ता यीशु मसीह और उनका बलिदान अपनी पीड़ा के माध्यम से मसीह ने शरीर मृत्यु और पाप देने दोनों के लिए मूल्य चुकाया उन्होंने सिखाया परमेश्वर ने जगत से इतना प्रेम किया कि उन्होंने अपना इकलौता पुत्र दिया जो कि उनमें विश्वास लाए नशन ना हो परंतु अनंत जीवन पाए यीशु मसीह ने एक संपूर्ण जीवन जिया हमेशा अपने पिता की आज्ञाओं को देखते हुए वह फिलिस्तीन की सड़कों पर चले अनंत काल की सच्चाइयों को सिखाते हुए बीमारों को चंगाई देते हुए अंधों का देखना संभव करते हुए मृतकों को उठाते हुए वह अच्छाई करते हुए चले और अपने और सभी को अपने उदाहरण के अन्यायी करने की विनती की अपने नश्वर जीवन के अंत में उन्होंने घुटने टेक कर यह प्रार्थना की हे पिता यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले मेरी नहीं परंतु अपनी इच्छा पूरी हो वह अनंत संकट में व्याकुल होकर और भी हृदय वेदना से प्रार्थना करने लगा और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों की नई भूमि पर गिर रहा था मसीह हमें अपनी पीड़ा की अहमियत को बेहतर ढंग से समझाता है जब उन्होंने भविष्यवक्ता यूसुफ स्मिथ से कहा था मैं परमेश्वर ने सबके लिए इन चीजों को सहा है ताकि वे ना सहे जो पश्चाताप करते हैं, परंतु पश्चाताप नहीं करते हैं, वह सहेंगे जैसे मैंने सहा है। जो पीड़ा मैंने अपने आप को दी है, परमेश्वर भी सब में सबसे महान दर्द से कांपे हैं और हर रोम से रक्त बहा है और दोनों शरीर और आत्मा में कष्ट पाया है। वह गेत्सेमन के बगीचे में उन्होंने हमारे पापों के लिए हमारी बीमारियों, हमारे दर्द और हमारी दुर्बलताओं की कीमत दी, क्योंकि उन्होंने किया हम उन दुर्बलताओं में कभी भी अकेले ना होंगे। यदि हम उनके साथ चलने का अनुभव करते हैं, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और झूठे आरोपों पर उनकी निंदा की गई थी, एक भीड़ को संतुष्ट करने के लिए दोषी ठहराया गया और कलवारी क्रॉस पर मारने की सजा सुनाई गई। क्रूस पर उन्होंने अपना जीवन मनुष्य जाति के पापों के लिए त्याग दिया, एक महान नायक उपहार में उन सबके लिए जो इस धरती पर कभी रहे हैं। उन्होंने घोषित किया, देखो मैं यीशु मसीह हूँ जिसके विषय में भविष्यवक्ताओं ने गवाही दी थी कि स्वर्ग से आया हूँ, और देखो और मैं संसार की ज्योति और जीवन हूँ, और मैंने उस कड़वे प्याले को पिया है जिसे पिता ने मुझे दिया था, और संसार के पापों को अपने ऊपर लेकर मैंने पिता को गौरवान्वित किया है। फिर सप्ताह के पहले दिन वह एक परिपूर्ण पुनरुत्थान शरीर में कब्र से जी उठे फिर कभी न मरने के लिए, और क्योंकि उन्होंने ऐसा किया तब हम भी करेंगे। मैं गवाही देता हूं कि मसीह वास्तव में कब्र से जी उठे, परंतु उस कब्र से जी उठने के लिए उन्हें पहले मरना पड़ा, और मैं भी ऐसा करना है। मैंने जीवन की और महान आशीष रही स्वर्ग की निकटता को, उन क्षणों को महसूस करना जब मैं उन लोगों के बिस्तर के पास बैठा होता हूँ जो चले जाते हैं। कुछ वर्ष पूर्व एक सुबह मैं अंतिम दिनों के संत की एक विश्वसनीय विधवा जिन्हें कैंसर था, उनका अस्पताल में कमरे में गया। उनकी दो बेटियां उनके साथ बैठी थी। जैसे ही मैं उनके बिस्तर के पास गया, मैं पाया कि वह उस लंबी पीड़ा में नहीं थी क्योंकि उनकी मृत्यु हो चुकी थी। उन मृत्यु के क्षण में वह कमरा शांति से भरा था। उनकी बेटियों पर एक मीठी सी उदासी थी, परंतु उनके मन विश्वास से भरे थे। वह जानती थी कि उनकी माँ नहीं गई परंतु अपने घर लौट गई। हमारे गहरे दुख के क्षणों में, इन क्षणों में जब मैं स्थिर खड़ा प्रतीत होता है और जीवन इतना अन्यायपूर्ण लगता है, तो हम अपने उद्धारकर्ता में आराम पा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने भी कष्ट सहा है। मेरा उस कमरे में होना सौभाग्य था। जब हमारी मृत्यु होती है तो हमारी आत्मा हमारे शरीर को छोड़ देती है और अपनी यात्रा के अगले पड़ाव पर जाती है। आत्मा के संसार में वह एक सीखने की पश्चाताप क्षमा का और बनने का स्थान है जहाँ हम पुनरुत्थान की प्रतीक्षा करते हैं। भविष्य के इस किसी महान दिन पर हर एक जिसने जन्म लिया है वह कब्र से उठेगा। हमारी आत्माएं और हमारे प्राकृतिक शरीर पर अपने आदर्श रूप में पुनः स्थापित किए जाएंगे। सभी का पुनरुत्थान होगा, दोनों बूढ़े और जवान, दोनों पुरुष और महिला, दोनों बुरे और अच्छे, और हर एक को अपने संपूर्ण ढांचे में पुनर्निर्माण जैसा किया जाएगा। पुनरुत्थान के बाद हमारे पास उद्धारकर्ता द्वारा न्याय का सर्वोच्च आशीर्वाद होगा, जिन्होंने कहा है, इसलिए मैं सारे लोगों को अपने पास लाऊंगा ताकि उनके कर्मों के अनुसार उनका न्याय हो सके। और ऐसा होगा कि जो कोई भी पश्चाताप करेगा और मेरे नाम में बपतिस्मा लेगा वह परिपूर्ण होगा, और यदि वह अंत तक धीरज रखता है, देखो उस दिन जब मैं संसार के न्याय के लिए खड़ा रहूंगा, तब मैं उसे अपने पिता के समक्ष निर्दोष ठहराऊंगा, और फिर मसीह और उनके बलिदान के द्वारा वह सब जो उसका अनुसरण कर विश्वास को चुनते हैं, पश्चाताप, बपतिस्मा, पवित्र आत्मा को प्राप्त करना और अंत तक धीरज रखते हैं, वह पाएंगे कि उनकी यात्रा का परिणाम यह है कि वह अपने भाग्य को प्राप्त करें, अनंत जीवन के वारिस के रूप में वे अपने पिता की उपस्थिति में लौटेंगे। उनके साथ हमेशा के लिए रहने के लिए संभव हो कि हम अच्छा चुनाव करें। जन्म और मृत्यु के बीच जो कुछ होता है उसके मुकाबले हमारे अस्तित्व को लेकर और बहुत कुछ है। मैं आपको आने और मनुष्य मसीह का अनुसरण करने के लिए आमंत्रित करता हूँ। मैं अंतिम दिनों के संतों का, यीशु मसीह का गिरजा घर के सदस्यों को आमंत्रित करता हूँ। हर दिन हाँ मसीह के पास आओ और अब उसमें परिपूर्ण बनो और स्वयं सारी अधार्मिकताओं को अस्वीकार करो, ताकि मसीह के लहू बहाए जाने के द्वारा, जिससे कि तुम बिना दाग के पवित्र हो जाते हो। मैं उन सभी को आमंत्रित करता हूं जो गिरजाघर के अभी तक सदस्य नहीं हैं, आने के लिए और मार्मन की पुस्तक पढ़ें और प्रचारक को सुनने के लिए आओ और विश्वास रखो और अपने पापों से पश्चाताप करें, आओ और बपतिस्मा लो और पवित्र आत्मा को प्राप्त करो, आओ और खुशहाल मसीह से भरा जीवन जियो जैसे कि आप उनके पास आते हो।
And read the Book of Mormon and listen to the missionaries. Come and have faith and repent of your sins. Come and
जैसे कि आप उनके पास आते हैं और उनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं और मैं वादा करता हूं कि आप इस अशांत नाशवान अनुभव में शांति और उद्देश्य पाएंगे और अनंत जीवन आने वाले संसार में पाएंगे।
And eternal life in the world to come.
जिन्होंने इन सच्चाइयों का अनुभव किया है और किसी भी कारण से भटक चुके हैं, मैं आपको वापस आने के लिए आमंत्रित करता हूं। आज ही वापस आइए। हमारे पिता और उद्धारकर्ता आपको प्रेम करते हैं। मैं गवाही देता हूं कि मसीह के पास आपके प्रश्नों के उत्तर देने की, आपको दर्द और दुख को चंगा करने की और आपके पापों को क्षमा करने की शक्ति है। मैं जानता हूं कि यह सब सच है। मसीह जीवित है, उनका गिरजाघर है। यीशु मसीह के नाम से आमीन।
कलीसिया और गायक मंडली एक साथ खड़े होकर ग्लोरी टू गॉड गाएगी। गाने के पश्चात हम 12 प्रेरितों के परिषद के एल्डर डेल जी रेनलन को सुनेंगे। उनके बाद 70 की अध्यक्षता के एल्डर ओलिसिस सॉरेस बोलेंगे। फिर 70 के एल्डर मार्क ब्रैग हमें संबोधित करेंगे। उनके बाद गायक मंडली टीच मी टू वॉक इन द लाइट गाएगी।
This is the 187th.
ये अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे का 188वां वार्षिक महासम्मेलन है।
We get a glimpse
हमें अपने स्वर्गीय पिता के चरित्र की झलक तब देखने को मिलती है जब हम उनकी अत्यधिक दया पापियों के लिए देखते हैं और उस अंतर के मध्य की सराहना जो वह पाप और जो पाप को करते हैं। यह झलक हमें सही चरित्र उत्तमता और गुणों को समझने में मदद करता है और यह उनमें और उनके पुत्र यीशु मसीह में विश्वास का अभ्यास करने में मूलभूत है। उद्धारकर्ता की दया हमारी अपूर्णता के मुख्य में उनकी ओर खींचती है और हमें हमारे बार बार होने वाले संघर्ष में हमें उनकी ओर पश्चाताप और अनुसरण करने के लिए प्रेरित करती है। जैसे कि हम उनकी तरह और भी बनते हैं, हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करना सीखते हैं जैसे वह करते हैं, बावजूद किसी के बाहरी चरित्र या स्वभाव के। एक व्यक्ति और खुद के व्यक्तिगत के बाहरी चरित्र के प्रभाव का विशिष्ट उत्तर फ्रेंच लेखक विक्टर ह्यूगो के नॉवल लेस मिसरेबल्स का केंद्र है। जैसे ही नॉवल खुलता है, कथावाचक बीएनवेयून मियसरेल का परिचय देते हैं, टिगेन के बिशप का, और विचार करते हैं एक दुविधा के विषय में जो बिशप के सामने है। क्या वह उस व्यक्ति के मिलने जाए जो स्वीकृति नास्तिक है और समाज में अपने फ्रेंच क्रांति के पिछले व्यवहार के कारण विस्तृत है। कथावाचक कहते हैं कि बिशप को सहज रूप से इस पुरुष के लिए गहरी घृणा महसूस हुई। फिर कथावाचक ने एक सरल प्रश्न पूछा, सभी वही क्या भेड़ की पपड़ी चरवाहों को पीछे हटाने की वजह देती है? बिशप के लिए उत्तर देते हुए कथावाचक ने स्पष्ट उत्तर दिया, नहीं। एक हास्यपूर्ण टिप्पणी दी, परंतु ये कैसी भेड़ है? इस पद में ह्यूगो व्यक्ति की दुष्टता की तुलना भेड़ की त्वचा के रोग से करता है और बिशप की तुलना चरवाहे से करता है जो कि अपने आप को बीमार भेड़ से अलग नहीं करता है। बिशप सहानुभूतिपूर्ण है और बाद में नेविल में एक दूसरे व्यक्ति के प्रति इस तरह से दया को दर्शाते हैं जो नॉवल का मुख्य नायक है। एक अपमानित पूर्व अपराधी जीन लॉनवेज ने बिशप की दया और सहानुभूति जीन लॉन्जेंस को अपने जीवन की दिशा बदलने के लिए प्रेरित करती है, क्योंकि परमेश्वर पूरे धर्मशास्त्र में रोग को पाप के रूप में इस्तेमाल करते हैं। यह पूछना उचित है कि यीशु मसीह की क्या प्रतिक्रिया होती है जब वे हमारे रोगों का रूप हमारे पापों को देखते हैं। आखिरकार उद्धारकर्ता ने कहा कि आप पापों के लिए थोड़ी सी भी छूट नहीं दे सकता, तो फिर वह हमें कैसे देख सकते हैं? अपूर्ण जैसे हम हैं, बिना डर और घृणा के प्रतिघात में। उत्तर सरल और साफ है, जैसे कि दयालु चरवाहा यीशु मसीह अपनी भेड़ में रोग को एक अस्वस्थ की तरह देखते हैं, जैसे इलाज, देखभाल और प्रेम की आवश्यकता है। यह चरवाहा, हमारा दयालु चरवाहा, अपनी रोगी भेड़ को चंगाई की ओर देख प्राप्त करता है। उद्धारकर्ता ने सीखा है कि वह चरवाहे को नई अपने झुंड को चराएगा, खोए को ढूंढेगा, निकाले हुए और फिर लाऊंगा, घायल को घाव बांधूंगा और बीमार बलवान करूंगा, क्योंकि प्रक्षतिक की इसराइल को प्राप्त के प्रयुक्त घावों और खरोचों और सड़े घावों में चित्रित किया गया। उद्धारकर्ता ने प्रोत्साहित, संबोधित और चंगाई का वादा किया। उद्धारकर्ता की नाशवान सेवा वास्तव में प्रेम, दया और सहानुभूति का चित्रण थी। वह गलीली और जूड़ा की धूल भरी सड़कों पर तिरस्कार पूर्वक नहीं चले। पापियों की निगाह से बचते हुए उन्होंने इसे घोर आतंक में चकमा नहीं दिया, नहीं, उन्होंने उनके साथ खाया, उन्होंने उनकी मदद और उन्हें आशीषित किया, उठाया और ऊंचा किया, और डर और निराशा को आशा और आनंद में बदला। सच्चे चरवाहा की तरह वह है, वह खोजते हैं और हमें और मुक्ति और आशा के लिए हमें ढूंढते हैं। उनकी दया और प्रेम को समझना हमें उनमें विश्वास का अभ्यास करता है पश्चाताप चंगाई के लिए। यूहन्ना का सुसमाचार उद्धारकर्ता की एक पापी के प्रति सहानुभूति के प्रभाव का विवरण देता है। शास्त्री और फारसी एक स्त्री को उद्धारकर्ता के पास लाए जो व्यभिचार में पकड़ी गई थी। दोष लगाने वालों ने कहा कि उसका पथराव हो। व्यवस्था में मूसा की आज्ञा द्वारा यीशु ने निरंतर प्रश्नों के उत्तर में आखिरकार उनसे कहा, तुम में से अपने पाप ना किया हो वह उसे पहला पत्थर मारे। दोष लगाने वाले चले गए और यीशु अकेले रह गए और वह स्त्री बीच में खड़ी। जब यीशु ने किसी को नहीं परंतु स्त्री को देखा, उन्होंने उसे कहा, स्त्री वह कहाँ गए? क्या किसी ने तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं दी? उन्होंने कहा, कोई व्यक्ति नहीं प्रभु। और यीशु ने उनसे कहा, और मैं भी तुझ पर दंड की आज्ञा नहीं देता, जा और फिर पाप ना करना। निश्चित रूप से उद्धारकर्ता ने व्यभिचार को अनदेखा नहीं किया, परंतु इसके लिए उन्होंने उस स्त्री को दंड भी नहीं दिया। उन्होंने उसे अपने जीवन को सुधारने के लिए प्रोत्साहित किया। वह बदलने के लिए प्रेरित हुई उनकी दया और अनुग्रह के कारण। बाइबल के जोसेफ स्मिथ ट्रांसलेशन में उनकी परिणामी शिष्यत्व को प्रमाणित किया और स्त्री ने परमेश्वर की महिमा उस घंटे से की और उनके नाम में विश्वास किया। यद्यपि परमेश्वर सहानुभूति रखते हैं, हमें गलती से भी यह विश्वास नहीं करना चाहिए कि वह पाप को स्वीकार कर रहे हैं और उसे ग्रहण कर रहे हैं। वह नहीं कर रहे हैं। उद्धारकर्ता पृथ्वी पर हमें हमारे पापों से बचाने के लिए आए और महत्वपूर्ण रूप से हमारे पापों में हमें नहीं बचा सकते। एक कुशल प्रश्नकर्ता जिजिरोम ने एक बार अमुलेक को पूछा, फसाना चाहा, क्या वह अपने पापों को उनके पापों में रहते हुए बचाएगा? और अमुलेक ने उन्हें उत्तर दिया और कहा, मैं तुमसे कहता हूँ कि वह ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि अपने शब्द को अस्वीकार करना उसके लिए असंभव है। वह अपने लोगों को उनके पापों में रहते हुए नहीं बचाएगा। अमुलेक ने एक पापों से बचने के लिए एक मौलिक सच्चाई कही, हमें पश्चाताप के प्रतिबंध को मानना चाहिए और मुक्तिदाता की आत्माओं को बचाने की शक्ति को खोलती है। उद्धारकर्ता की करुणा, प्रेम और दया हमें उनकी ओर खींचती है। उनके बलिदान द्वारा हम अब अपनी पाप की स्थिति से संतुष्ट नहीं है। परमेश्वर क्या सही है और उन्हें क्या स्वीकृति और क्या गलत और पापी है के बारे में साफ है। ऐसा इसलिए नहीं है कि वह नासमझ आज्ञाकारी अनुयायी चाहते हैं। नहीं, हमारे स्वर्गीय पिता इच्छा रखते हैं कि उनके बच्चे जानते हुए और इच्छा से उनकी तरह बनने का चुनाव करें और उस जीवन की योग्य बने, उसका आनंद वह लेते हैं। ऐसा करने में उनके बच्चे अपने दिव्य नियति को पूरा करते हैं और उन सबके उद्धारकर्ती हो जाते हैं जो उनका है। इस कारण गिरजा के अध्यक्ष परमेश्वर की आज्ञाओं या सिद्धांतों को अपनी इच्छा से बदल नहीं सकते सुविधाजनक या लोकप्रिय होने के लिए। किंतु हमारे जीवन भर यीशु मसीह का अनुसरण करने की इच्छा, उनका दयालुता का उदाहरण उसके लिए विशेष रूप से शिक्षाप्रद है जो पाप करते हैं। हम जो पापी हैं, जरूर उद्धारकर्ता को पसंद करें, दूसरों तक करुणा और प्रेम से पहुंचे। हमारे कार्य मदद और आशीष उठाना और ऊंचा और डर और निराशा को आशा और आनंद में बदलने का भी होना चाहिए। उद्धारकर्ता ने उन व्यक्तियों की निंदा की जो उनसे पीछे हटे, जिन्हें वह अस्वच्छ और अपने से न्याय संगत रूप से दूसरों को अपने से अधिक पापी घोषित रखते थे। उद्धारकर्ता ने यही सुस्पष्ट कर उपदेश उनको निर्देशित किया जो अपने ऊपर भरोसा रखते हैं, हम धर्मी हैं औरों को तुच्छ जानते हैं। उन्होंने यह दृष्टांत दिया, दो मनुष्य मंदिर में प्रार्थना करने के लिए, एक फारसी और दूसरा चुंगी लेने वाला था। फारसी खड़ा होकर अपने मन में ये प्रार्थना करने लगा, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं अब मनुष्य के नई अंधेर करने वाला, अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और ना इस चुंगी लेने वाले की तरह हूँ। मैं सप्ताह में 2 दिन उपवास रखता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ। परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़ा होकर स्वर्ग की ओर अपनी आंख भी ना उठानी चाहिए, वरना अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर,
मुझ पापी पर दया करो। यीशु ने फिर समाप्त किया, मैं तुमसे कहता हूँ कि यह चुंगी लेने वाले व्यक्ति दूसरे फारसी से उचित परंतु यह मनुष्य धर्मी ठहराया जाएगा अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। हमारे लिए संदेश साफ है, एक पश्चाताप करने वाला पापी परमेश्वर के पास आता है दूसरी तुलना में जो स्वयं धर्मी पापी की निंदा करता है। मनुष्य की आत्मसंतुष्टि और आलोचनात्मक प्रवृत्ति आलमा के दिनों में भी थी, जैसे कि लोगों ने गिरजों को और भी स्थापित करना शुरू किया। गिरजे में मोम गर्व आने लगा। गिरजे के लोग अपने घमंड की आंखों में उठने लगे कि वे एक दूसरे का तिरस्कार करने लगे, और उन्होंने उन लोगों को सताना आरंभ कर दिया जो उनके इच्छा और अभिलाषा के अनुसार नहीं रहते थे। यह उत्पीड़ना विशेष रूप से वर्जित था। अब एक कड़ा कानून गिरजे के लोगों के बीच था कि उनमें से कोई भी व्यक्ति गिरजे से संबंधित उठे और उन्हें कष्ट दे जो गिरजे के नहीं है, और उनके बीच किसी भी तरह की पीड़ा ना हो। गिरजे का मार्गदर्शक सिद्धांत भी समान है, हमें किसी को भी कष्ट देने का दोषी गिरजे के अंदर या बाहर नहीं होना है। जिनको सताया गया है वे जानते हैं कि अन्याय और पक्षपात कैसे होता है। यूरोप 1960 में एक किशोर अवस्था में रहते हुए मुझे ऐसा महसूस हुआ कि क्योंकि मैं एक अमेरिकन गिरजे का सदस्य था, मेरा बार बार चयन और मुझे भयभीत किया जाता। मेरे कुछ स्कूल के साथी भी मुझसे ऐसा व्यवहार करते जैसे कि मैं यूएस के अप्रसिद्ध विदेशी नीतियों के लिए जिम्मेदार हूँ। मुझसे ऐसा भी बर्ताव किया गया जैसा कि मेरा धर्म उन राष्ट्रों के लिए अपमानित है जिनमें मैं रहता हूँ, क्योंकि वह राज्य प्रयोजित धर्म से अलग था। बाद में दुनिया के कई देशों में मैंने छोटी झलक पक्षपात और भेदभाव की कुरूपता में बदलती देखी। उन कष्ट देखते हुओं के लिए उन जिन्हें प्रजाति या जाति के लिए लक्ष्य बनाया जाता है, कष्ट कई रूप में आता है। उपहास, उत्पीड़ना, दादागिरी या एक दूसरे के लिए नफरत। हमें उस पक्षपात के विरुद्ध सतर्क रहना चाहिए जो अपनी घृणा आवाज को अपने लिए उठाते हैं, जो विभिन्न विचार रखते हैं। पक्षपात खुद में स्पष्ट करता है भाग में समान स्वतंत्रता अभिव्यक्ति करने की अप्रसन्नता को हर एक धर्म के लोगों के सहित को अपने विचार जनता के चौक में व्यक्त करने का हक है, परंतु किसी के पास किसी के प्रति उन विचारों को व्यक्त किए जाने पर नफरत करने का लाइसेंस नहीं है। गिरजों का इतिहास हमें हमारे सदस्यों के प्रति नफरत और पक्षपात के व्यवहार का पर्याप्त सबूत देते हैं। कितना विडंबना भरा दुख होगा यदि हम भी दूसरों से वैसा ही व्यवहार करें जैसा हमारे साथ हुआ। उधारकर्ता ने सिखाया, इस कारण जो कुछ तुम चाहते हो कि मनुष्य तुम्हारे साथ करे तुम भी उनके साथ वैसा ही करो। हमें सम्मान मांगने के लिए हमें उदारणीय होना चाहिए। इसके अतिरिक्त हमारी वास्तविक बातें मन की नम्रता और सादगी को लाती है जो पवित्र आत्मा को आमंत्रित करती है और हमें दूसरों के लिए संपूर्ण प्रेम एक सच्चे प्रेम से भर देती है। हमारा दयालु चरवाहा कभी नहीं बदलता, आज भी पाप और पापियों के लिए वैसा ही महसूस करते हैं जैसा तब जब वह इस धरती पर थे, क्योंकि हम पाप करते हैं। वह कभी पीछे नहीं हटते, और यदि वह कोई अवसर पर सोचते होंगे परंतु कैसी यह भेड़ है, वह हमें इतना प्रेम करते हैं कि उन्होंने हमें पश्चाताप का और साफ होने का एक मार्ग प्रदान किया है ताकि हम उनके और अपने स्वर्गीय पिता के पास वापस लौट सके। ऐसा करने में यीशु मसीह ने हमारे लिए एक उदाहरण बनाया। उनका अनुसरण करने के लिए उसके लिए आदर और किसी के भी प्रति नफरत नहीं है। उनके चेले होते हुए हम सब अपूर्णता से उनके प्रेम की प्रतिबिंबता कैसे और एक दूसरे को इतनी स्पष्टता और संपूर्णता से प्रेम करें कि कोई भी त्याग अकेला या निराशाजनक ना महसूस करे। मैं साक्षी देता हूँ कि यीशु मसीह हमारा दयालु चरवाहा है जो हमें प्रेम और हमारी देखरेख करते हैं। वह हमें जानता है और हमारे अपना जीवन अपनी भेड़ के लिए दे दिया है। वह हमारे लिए जीते हैं और चाहते हैं कि हम उन्हें जाने और उनमें विश्वास का अभ्यास करें। मैं उनसे प्रेम और उनका आदर करता हूँ और मैं उनका पूर्ण तह से आभारी हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
भाई और बहनों, आज मैं अपना संदेशीय गवाही देकर आरंभ करना चाहता हूं कि मैं जानता हूं कि अध्यक्ष थॉमस एस मॉनसन हमारे समय में परमेश्वर के भविष्यवक्ता हैं। प्रथम अध्यक्षता में उनके सलाहकार और 12 प्रेरित भी असल में भविष्यवक्ता, दूरदर्शी और प्रकृति करता है। वे प्रभु यीशु मसीह का प्रतिनिधित्व करते हैं और उनके पास उसके मन और इच्छा की घोषणा करने का अधिकार होता है, जैसे इसे उन पर प्रकट किया जाता है। मैं गवाही देता हूं कि उनकी सलाह का पालन करने में सुरक्षा है। प्रभु ने स्वर्गीय पिता और उसके पुत्र यीशु और उनके प्रायश्चित में हमारा विश्वास को मजबूत करने के महत्व की प्रेरणा देते हैं, ताकि जब हम अपने समय में चुनौती का सामना करते हैं तो हम डगमगाए नहीं। मॉर्मन की पुस्तक में हम अमोमन नामक व्यक्ति के बारे में पढ़ते हैं जिसे जरहुमला प्रदेश से लेही नफी प्रदेश उनके भाइयों के बारे में पता करने भेजा गया था। वहां उसे राजा लिम्ही और उसके लोग मिले जो लमाइनियों की गुलामी में थे। राजा लिम्ही अमोमन की बातों से उत्साहित हुआ था जो उसने जरहुमला में अपने लोगों के विषय में बोला था। राजा लिम्ही का हृदय इतनी आशा और आनंद से भर गया था कि उसने अपने लोगों को मंदिर में एकत्रित किया और बोला, इसलिए मैं अपने सिरों को ऊपर उठाओ और आनंद मनाओ और परमेश्वर में अपना भरोसा रखो। यदि तुम संपूर्ण हृदय से प्रभु की ओर लौटोगे और उसमें अपना भरोसा रखोगे और पूरे मन से उसकी सेवा करोगे, यदि तुम ऐसा करते हो, वह अपनी स्वयं की इच्छा और खुशी से तुम्हें गुलामी से छुड़ाएगा। राजा लिम्ही के लोग अमूमन के शब्दों से इतनी शक्तिशाली रूप से प्रभावित हुए कि उन्होंने अपनी कठिन परिस्थितियों के होते हुए भी परमेश्वर की सेवा करने और उसके आदेशों का पालन करने का अनुबंध बनाया। अपने विश्वास के कारण वे योजना बनाने के लमनाई के हाथों से बच निकलने में सक्षम हुए थे। कृपया राजा लिम्ही को अपने लोगों को निमंत्रण देने और हमारे लिए इसकी प्रासंगिकता के महत्व पर विचार करें। उन्हें कहा था कि अपने सिरों को उठाओ और आनंद मनाओ और परमेश्वर में अपना भरोसा रखें। इन शब्दों के साथ लिम्ही ने अपने लोगों को भविष्य के विश्वास की आंखों से देखने और उन्हें संदेहों के को विश्वास में पैदा हुई आशा से बदलने और अपने परिस्थितियों की चिंता न करते हुए परमेश्वर पर अपना भरोसा रखने का निमंत्रण दिया था। नश्वर जीवन परीक्षा का समय है जहां हमें साबित करना होगा कि क्या हम उन सब कार्यों को करते हैं जिनकी आज्ञा प्रभु हमारा ईश्वर हमें देगा। इसके लिए मसीह में अटल विश्वास की आवश्यकता होगी, चाहे परिस्थितियां बहुत कठिन हो। इसके लिए आवश्यकता होगी कि हम मसीह में विश्वास के साथ आगे बढ़ते जाएं, आत्मा के निर्देशन द्वारा और भरोसा करते हुए परमेश्वर हमारी जरूरतों को पूरा करेगा। पृथ्वी की अपनी सेविकाएं के अंत में कैद किए जाने से ठीक पहले उद्धारकर्ता ने अपने शिष्यों को सिखाया था कि संसार में तुम्हें कलेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। एक क्षण के लिए मेरे साथ विचार करें। यीशु मसीह पिता का इकलौता पुत्र ने पाप रहित जीवन जिया और संसार के सभी लोगों, दुखों, चुनौतियों और कष्टों पर विजय पाई थी। उसने गत समनी में अपने लहू की बूंदें बहाई थी। उसने इतना अत्याधिक दर्द सहा था जिसकी व्याख्या करना कठिन है। हम में से हर एक की मदद करने के लिए हर बोझ के साथ अपने जीवन कष्ट सहने, मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा उसने प्रत्येक बाधा को दूर किया। इस पृथ्वी पर हमें आनंद और शांति पाने के लिए उसने प्रायश्चित बलिदान के लाभ उन सभी के मिलते हैं जो हमें स्वीकार और स्वयं का इनकार और उससे सच्चे शिष्य के रूप में उसका अनुसरण करते हैं। इसलिए जब हम यीशु मसीह और उसके प्रायश्चित में विश्वास करते हैं तो हम मजबूत किए जाएंगे, हमारे बोझ हल्के होंगे और उसके द्वारा संसार पर विजय पाएंगे।
overcome the world. Brothers and sisters,
यदि तुम संपूर्ण हृदय से प्रभु की ओर लौटोगे, भाइयों और बहनों, जब हम ताकत और आशा पर विचार करते हैं जो हम उद्धारकर्ता से प्राप्त कर सकते हैं, तो हमारे पास अपने सिरों को उठाने और आनंदित होने, परमेश्वर में अपना भरोसा रखने और बिना डगमगाए आगे बढ़ने का कारण है, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है जो हवा में से बहती और उछलती है। संदेह करने वाला अपने सभी कामों को अस्थिर रखता है। यदि तुम संपूर्ण हृदय से प्रभु की ओर लौटोगे तो पूरे मन से उसकी सेवा करोगे। यदि तुम ऐसा करते हो, वह अपनी स्वयं की इच्छा और खुशी से तुम्हें गुलामी से छुड़ाएगा। उद्धारकर्ता के स्वयं के वचनों को सुने जब वह हमें निवेदन करता था, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यदि तुम मुझ में प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। जिसके पास मेरी आज्ञा और वह उन्हें मानता है, वही मुझे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उसमें मेरा पिता प्रेम रखेगा, और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। परमेश्वर हमारे विश्वास के अनुसार हमें आशीषित देता है। 10 विश्वास दिव्य उद्देश्यों और दृष्टि के से जीवन जीने का स्रोत है। विश्वास व्यवहारिक सिद्धांत है जो कार्य करने की प्रेरणा देता है। यह एक महत्वपूर्ण जीवित ताकत है जो स्वेच्छा से वह सब कुछ करने की हमारे सकारात्मक दृष्टिकोण और इच्छा को प्रकट करता है जो परमेश्वर और यीशु मसीह हमें करने को कहते हैं। इसके लिए हमें घुटनों से बल झुककर प्रभु के मार्गदर्शन के लिए प्रार्थना करना और खड़ा होने और विश्वास के साथ उन कार्यों को करना पड़ता है जो उसकी इच्छा के अनुरूप है। कुछ वर्ष पहले मिशन अध्यक्ष के रूप में सेवा करने के दौरान मुझे हमारे प्रिय प्रचारकों में से एक के माता पिता का फोन मिला, जिसमें उसकी बहन की मृत्यु के विषय में बताया गया। मुझे याद है उस क्षण की नाजुकता में उस प्रचारक और मैंने उसके बच्चों के लिए परमेश्वर की उद्धार की बेहतरीन योजना और कैसे यह ज्ञान उसे दिलासा देगा पर चर्चा की थी। यद्यपि वह इस दुखद घटना में आश्चर्यचकित और दुखी था, यह प्रचारक अपने आंसुओं और परमेश्वर में विश्वास के माध्यम से अपनी बहन के जीवन से आनंदित था। उसने प्रभु की करुणामय दया में अटल विश्वास व्यक्त किया। उसने दृढ़ता से मुझे कहा कि उन प्रतिज्ञाओं के योग्य होने के लिए जो परमेश्वर ने उसके और उसके परिवार के लिए रखी थी, वह अपने मिशन में पूर्ण विश्वास और परिश्रम से सेवा करना जारी रखेगा। जरूरत के समय में इस विश्वासी प्रचारक ने अपने हृदय को परमेश्वर की ओर मोड़ा, अपना संपूर्ण भरोसा उस पर रखा और पूरे परिश्रम से उसकी सेवा करने के अपने निश्चय को दोहराया। यदि हम परमेश्वर में पक्का भरोसा उसकी सेवा की इच्छा में स्थिर नहीं है तो नश्वरता के दुखद अनुभवों में से ऐसा महसूस होता है, हो सकता है मानो हमारे कंधों पर भारी बोझ हो और सुसमाचार के अनुसार जीवन जीने की प्रेरणा को खो सकते थे। बिना विश्वास के हम अनंत अपने परमेश्वर की उन बातों की प्रशंसा करने की क्षमता को खो देंगे और हमारे जीवन में के बाद में होगी। परीक्षा के इन क्षणों में सैतान जो कि हमेशा ताक में रहता है, हमारे तर्कों और विचारों को का हमारे विरुद्ध उपयोग करता है। वह हमें समझाता है कि सुसमाचार के सिद्धांतों को अनुसार जीवन जीना बेकार है। कृपया याद रखें कि प्रार्थिक मनुष्य के तर्क परमेश्वर के आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करते, क्योंकि यह उसकी दृष्टि में मूर्खता की बातें हैं। याद रखें कि शैतान परमेश्वर का शत्रु है और निरंतर उसके विरुद्ध लड़ता रहता है और पाप करने के लिए आमंत्रित करता और फुसलाता है, और जो बुरा है उसे करने के लिए निरंतर फुसलाता है। हमें धोखा देने की अनुमति नहीं देनी चाहिए, क्योंकि हम ऐसा करते हैं तो हम अपने विश्वास में डगमगा जाते हैं और परमेश्वर की आशाओं को पाने की अपनी शक्ति खो देते हैं। यदि हम अपने विश्वास में मजबूत रहते हैं और डगमगाते नहीं, तो प्रभु जीवन की चुनौतियों से ऊपर उठने की हमारी क्षमताओं को बढ़ाएगा। हम नकारात्मक प्रभावों को वश में करने के योग्य होंगे और हम कठिनाइयों पर विजय प्राप्त करने की क्षमता को विकसित करेंगे। बेशक ये चुनौतीपूर्ण प्रतीत क्यों ना होती हो, इसी ने राजा लेमे के लोगों को लेमानियों की गुलामी से रूप से बचने के योग्य बनाया था। मैं आपको परमेश्वर
पर अपने पूर्ण भरोसे को और उसको उसमें और उसमें आज के भविष्यवक्ताओं की शिक्षा में मैं रखने का निमंत्रण देता हूं। मैं आपको परमेश्वर के साथ आपके अनुबंधों अपने संपूर्ण जीवन से उसकी सेवा करने को दोहराने का निमंत्रण देता हूं। बेशक जीवन की परिस्थितियां कठिन हो, मैं गवाही देता हूं कि मसीह में अपने अटल विश्वास की शक्ति के द्वारा आप पाप की संदेह के अविश्वास की दुख के कष्टों से गुलामी से स्वतंत्र हो जाएंगे और आप अपने हमारे प्रेमी पिता की प्रतिज्ञा की गई सबकी आशीषों को प्राप्त करेंगे। मैं गवाही देता हूं कि परमेश्वर वास्तव में है, वह जीवित है और वह हमें प्यार करता है। वह हमारे आनंद के क्षणों में और हमारे संदेह दुख और निराशा के क्षणों में हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। मैं गवाही देता हूं कि यीशु मसीह संसार का उद्धार करता और मुक्ति दाता है। आज मैं अपनी वार्ता को पूर्त गाली स्तुति में पाए नॉट नाउ बट इन द कमिंग ईयर्स गीत से समाप्त करता हूं। यदि हमारे हृदयों पर सूर्य के बजाय बादल छाया फैलाता है, यदि दर्द में हमें कष्ट पहुंचाता है, चिंता ना करें, हम शीघ्र जान जाएंगे आप कौन है। यीशु अपने हाथों से हमें मार्ग दिखाता है और वह हमें बताएगा क्यों। यदि हम उसकी वाणी सुनते हैं, वह हमें तुरंत हमें बताएगा। परमेश्वर में अटल भरोसा रखो और हमें उसे थामने दो। निरंतर उसकी महिमा गाओ क्योंकि अंत में समझाएगा। मैं यही बातें यीशु मसीह के पवित्र नाम में कहता हूं, आमीन।
पॉलिस ने कुरिन्थियों में आशा का शानदार संदेश बांटा है। हम चारों ओर से क्लेश तो भोगते हैं पर संकट में नहीं पड़ते, निरुपाय तो हैं, निराश नहीं होते, सताए तो जाते हैं पर त्यागे नहीं जाते, गिराए तो जाते हैं पर नाश नहीं होते। पॉलिस की आशा का स्रोत क्या था? उसके उत्तर को सुने। इसलिए कि परमेश्वर ही है जिसने कहा कि अंधकार में से ज्योति चमके, और वही हमारे हृदयों में चमका कि परमेश्वर की महिमा की पहचान की ज्योति यीशु मसीह के चेहरे से प्रकाशमान हो। अति कठिन और अंधकार समय में भी हमारे चारों ओर ज्योति और भलाई रहती है। पिछले अक्टूबर में अध्यक्ष उकडॉर्फ ने हमें याद दिलाया था, हमारे चारों ओर ज्योति और सच्चाई की इतनी अत्याधिक संपत्ति है कि मुझे आश्चर्य होता है कि क्या हम वास्तव में उसकी कदर करते हैं जो हमारे पास है। हालांकि शैतान असल में चाहता है कि हम अपने ध्यान को अंधकार के धुंध पर केंद्रित रखें जो आंखों को अंधा कर देते हैं, हृदय को कठोर बनाते हैं और चौड़े रास्तों पर ले जाते ताकि वे खो जाए। फिर भी हमारे समय की चुनौतियों की परिपूर्ण जानकारी होते हुए प्रभु प्रतिज्ञा करता है, वह जो परमेश्वर की ज्योति है और वो ज्योति जो प्राप्त करता है और परमेश्वर में बना रहता है अधिक ज्योति प्राप्त करता है और उस ज्योति की चमक अधिक चमकदार बन जाती है उस संपूर्ण दिन तक। हम परमेश्वर की संतान हैं, ज्योति प्राप्त कर रहे हैं, निरंतर परमेश्वर में कायम हैं और अधिक ज्योति प्राप्त करने के लिए हमें बनाया गया है। आरंभ से ही हमने ज्योति का अनुसरण किया, हमने अपने स्वर्गीय पिता और उसकी योजना का अनुसरण किया। ज्योति की खोज करना हमारे आत्मिक डीएनए में है। मैंने इस अनंत सच्चाई को एक अप्रत्याशित स्थान पर सुंदरता से सीखते सुना था। एक बड़े बैंक में कार्य करते समय मुझे मिशिगन विश्वविद्यालय में प्रबंधक कार्यक्रम में जाने का निमंत्रण मिला था। कार्यक्रम के दौरान प्रोफेसर किम कैमरन ने सकारात्मक नेतृत्व और इसके आकर्षक करने वाले प्रभाव के सिद्धांत को सिखाया था। उन्होंने बताया यह सभी जीवित प्रणाली में सकारात्मक शक्ति ज्योति की ओर जाने और नकारात्मक शक्ति अंधकार से दूर हटने की प्रवृत्ति को बताती है। अकेला कोशिकीय जीव से लेकर मनुष्य की जटिल प्रणाली तक प्रत्येक जीवित वस्तु में सकारात्मक की ओर झुकने और नकारात्मक से दूर हटने के स्वाभाविक गुण होते हैं। अत्यधिक अध्ययनों द्वारा समर्थित उन्होंने सफल कार्यस्थल संस्कृति के तीन सूक्ष्म गुण दया, क्षमा और आभार पर भी ध्यान डाला था। यह एकदम समझ में आता है कि लोग सकारात्मक ज्योति की ओर मुड़ते हैं। ये गुण पूरी तरह से संसार की ज्योति यीशु मसीह में मौजूद है। भाई और बहनों, कृपया दिलासा रखें, हमारे लिए ज्योति उपलब्ध है। मैं तीन स्थानों को बता सकता हूं जहां हमें हमेशा ज्योति मिलेगी। पहला, गिरजे की ज्योति। गिरजा अंधकार में संसार के लिए ज्योति की किरण है। अंतिम दिनों के संतों के गिरजे का सदस्य होने का यह शानदार समय है। गिरजा अब तक की सबसे अधिक मजबूत स्थिति में है और ये असल में प्रत्येक दिन मजबूत होता जा रहा है। जब नए सदस्य हमारे साथ जुड़ रहे हैं, नए समूह बनाए जा रहे हैं, नए प्रचारक नियुक्त किए जा रहे हैं और सुसमाचार के लिए नए क्षेत्र खुल रहे हैं, हम उन्हें देखते हैं कि जो कुछ समय के लिए गिरजे की सक्रियता से भटक गए थे बचाव के द्वारा वापस आ रहे हैं, जिसकी कल्पना अध्यक्ष मॉन्सन ने की थी। इससे प्रतिदिन चमत्कार होते हैं। हाल में ही मैं युवा शक्ति के सम्मेलनों के दौरान उनके साथ पैराग्वे, यूरुग्वे, चिली, अर्जेंटीना गया था। हजारों युवकों और युवतियों ने एक हफ्ता उद्धारकर्ता के प्रति अपने प्रेम को मजबूत करने में बिताया और फिर अपने परिवारों और मित्रों के बीच विश्व मसीह की ज्योति और प्रेम प्रसारित करते हुए अपने घरों को लौट गए। ध्यान रखे, गिरजे के आलोचक हमेशा रहेंगे, ये आरंभ से थे और अंत तक बने रहेंगे। हम इस प्रकार की आलोचना को हमें उपलब्ध ज्योति की हमारी संवेदनशीलता को कम करने की अनुमति नहीं दे सकते हैं। ज्योति को पहचानना और इसकी तलाश करना हमें और भी अधिक ज्योति पाने के योग्य बनाएगी। अंधकारमय समय में संसार में गिरजे की ज्योति की चमक अधिक चमत्कार होती जाएगी उस संपूर्ण दिन तक। दूसरा, सुसमाचार की ज्योति। सुसमाचार की ज्योति वह मार्ग है जिसका प्रकाश दोपहर तक अधिक और अधिक बढ़ता रहता है। ये विश्व भर में हमारे परिवारों में और मंदिरों में सबसे अधिक चमत्कार चमकती है। प्रीच माय गॉस्पेल बताता है, सुसमाचार की ज्योति के द्वारा परिवार गलत फहमियों, विवादों और चुनौतियों को हल कर सकते हैं। अनमर के कारण टूटे हुए परिवारों को पश्चाताप, क्षमा और यीशु मसीह के परिषद की शक्ति में विश्वास के द्वारा जोड़ा जा सकता है। पहले से अधिक हमारे परिवारों को, अपने आसपास हर किसी को के लिए महान ज्योति का स्रोत होना चाहिए। परिवार ज्योति में बढ़ते हैं जब वे प्रेम और दया में बढ़ते हैं। जब हम विश्वास, पश्चाताप, क्षमा, आदर, प्रेम और दया के परिवार को स्थापित करते हैं तो हमें उद्धारकर्ता के प्रति और एक दूसरे के प्रति प्रेम बढ़ते हैं। परिवार अधिक मजबूत होंगे और हम में से प्रत्येक के भीतर की ज्योति अधिक चमत्कार होगी। हम बाइबल शब्दकोश में पढ़ते हैं, केवल घर की तुलना मंदिर की पवित्रता से की जा सकती है। अब हमारे पास 155 कार्यरत मंदिर हैं और जल्द ही अधिक भी होंगे। अधिक से अधिक परिवार समय और अंतकाल के लिए मुहर बंद होते हैं। सदस्य पूर्वजों के अधिक नामों को उनके लिए उद्धार की विधियों के करने के लिए मंदिर में भेज रहे हैं। हम पर्दे के दोनों ओर महान आनंद का और उत्सव का अनुभव कर रहे हैं। अंधकारमय संसार में गिरजे की ज्योति की चमक अधिक चमकदार होती जाएगी उस संपूर्ण दिन तक। तीसरा, मसीह की ज्योति। आप संसार की ज्योति का जिक्र बिना संसार की ज्योति यीशु मसीह के बगैर नहीं कर सकते। स्वर्गीय पिता के प्यार का उदाहरण है कि हर कोई जो इस जीवन में आता है मसीह की ज्योति से आशीषित होता है, जो उन्हें घर लौटने में मदद करती है। अध्यक्ष बॉयड के पैकर ने सिखाया था, मसीह की आत्मा हमेशा बना रहती है। मसीह की ज्योति उसी प्रकार सर्वव्यापी है जिस प्रकार सूरज की ज्योति है। जहाँ कहीं मानव जीवन है वहाँ मसीह की ज्योति है। मसीह की ज्योति निरंतर भलाई करने का निमंत्रण देती है और उकसाती रहती है और उन सब को तैयार करती है जो पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए भलाई और सच्चाई की खोज करते हैं। उद्धारकर्ता सिखाता है कि वह ज्योति है जिसने तुम्हारी आंखों को ज्ञान दिया, समझ को सजीव किया, उन सब बातों को जीवन देती है। मसीह की ज्योति हमें दूसरों को उद्धारकर्ता की आंखों के द्वारा देखने में मदद करेगी। हम दूसरों के संघर्षों के प्रति अधिक प्रेमी और समझदार होंगे। ये हमें उनके प्रति अधिक धैर्यवान होने में मदद करेगी जो उस प्रकार आराधना या सेवा नहीं करते जिस प्रकार हम करते हैं। यह हमें सुख की महान योजना को पूरी तरह से समझने और देखने में मदद करेगी कि हम सब किस प्रकार इस महान योजना के अनुरूप होते हैं। यह हम जो कुछ करते हैं उसमें जीवन, अर्थ और उद्देश्य प्रदान करती है। संपूर्ण सुख जो मसीह की ज्योति को समझने के कारण मिलेगा उस आनंद की समानता नहीं कर पाएगा जो हम मसीह की ज्योति को दूसरों, परिवार, मित्रों और एकदम अजनबियों में कार्य करते हुए महसूस कर सकते हैं। मैंने उस आनंद का महसूस किया था जब हमें दमकल के साहसी समूह के प्रयासों के बारे में सुना था, जिन्होंने जुलाई 2015 में दक्षिण कैलिफोर्निया में जलते हुए स्टेक सेंटर को बचाने के लिए आग बुझाई थी। जो जो आग बढ़ रही थी, दमकल टुकड़ी के कमांडर ने एलडीएस में से पूछा कहां पर पवित्र निशानियां और प्रभु भोज के प्याले रखे थे ताकि वे उन्हें बचा सके। उसने मित्र से उससे कहा कि वहां पर कोई निशानियां नहीं थी और कि प्रभु भोज प्याले कीमती नहीं थे, लेकिन कमांडर ने कुछ करना महसूस किया, इसलिए उसने दमकल कर्मियों को मसीह के प्रत्येक चित्र को दीवार से उतारने के लिए जलते हुए भवन के पीछे की ओर भेजा ताकि इन्हें जलने से बचाया जा सके। उन्होंने एक चित्र को दमकल गाड़ी पर रख दिया इस आशा में कि दमकल कर्मियों की हिफाजत हो सके। कमांडर की दया, भलाई और ज्योति के प्रति संवेदनशीलता से मैं सच में प्रभावित हुआ था, विशेषकर खतरनाक और कठिन समय के दौरान। अंधकारमय संसार में गिरजे की ज्योति की चमक अधिक चमकदार होती जाएगी उस संपूर्ण दिन तक। मैं फिर से पौलुस के वचनों को दोहराता हूँ, हम ज्योति के हथियार बांध लें। मैं मसीह की गवाही देता हूँ, वह संसार की ज्योति है। मैं आशा करता हूँ कि हम गिरजे में अधिक भागीदारी और हमारे परिवारों में सुसमाचार के सिद्धांतों का अधिक पालन करने के द्वारा उस ज्योति से मजबूत होंगे जो हमें उपलब्ध है। मैं आशा करता हूँ हम दूसरों के निरंतर मसीह की ज्योति को देखें और उन्हें इसे स्वयं में देखने के लिए मदद करें। जब हम उस ज्योति को प्रदान को प्राप्त करते हैं तो हम अधिक ज्योति से आशीषित होंगे। जब हम उस संपूर्ण दिन फिर से सब उजालों के पिता, हमारे स्वर्गीय पिता को दोबारा से देखेंगे। मैं इसकी गवाही संसार की ज्योति अर्थात यीशु मसीह के पवित्र नाम में देता हूँ। आमीन।
We thank all who have participated in this session and express gratitude.
हम उन सभी लोगों का धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस समय यहाँ पे भाग लिया है और मॉर्मन मंडप गायक मंडली का इस सुबह सुंदर संगीत प्रदान करने के लिए आभार प्रकट करते हैं। हमारे इस सत्र के अंतिम वक्ता 12 प्रेरितों के परिषद के अध्यक्ष रसेल एम नेल्सन होंगे। उनके पश्चात गायक मंडली रिजॉइस द लॉर्ड इज किंग गाकर इस सभा का समापन करेगी। उसके बाद समापन प्रार्थना 70 के एल्डर जोरेगे एफ जबालस द्वारा की जाएंगी।
मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम अति कठिन युग में जी रहे हैं। हम चुनौतियों, वाद विवाद और चारों तरफ की धुमाव जटिलताओं से घिरे हैं। इस अशांत समयों को पहले से देखा गया था। उद्धारकर्ता ने स्वयं चेतावनी दी थी कि हमारे दिन विपत्तियां से उत्तेजित कर मनुष्य के मनों में क्रोध से भरे होंगे और उन्हें दूर कर देंगे। अभी भी हमारे स्वर्गीय पिता का इरादा कभी नहीं रहा कि हम व्यक्तिगत समस्याओं की उलझनों और सामाजिक मुद्दों पर अपने आप से घिरे। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र हमारे सहायता के लिए भेजा और उसका पुत्र यीशु मसीह ने अपना जीवन हमारे लिए दिया। और तो और कि हम अच्छे ईश्वरीय सामर्थ को काम में ला सके, समर्थ भोज से बाधाओं और हमारे दिन के प्रलोभन से अच्छी तरह से सामना करने देती है। आज में कैसे हम हमारे प्रभु और स्वामी यीशु मसीह की सामर्थ और अपने जीवन में ला सकते पर बोलना चाहता हूँ। हम शुरुआत उसके बारे में सीखने से करते हैं। यह असंभव है हमारे लिए कि हम अज्ञानता से बचाए जाएं। जितना अधिक हम उद्धारकर्ता की सेवकाई और शासन के बारे में जानेंगे उतना अधिक हम उसके सिद्धांत को समझेंगे और कि उसने हमारे लिए क्या क्या किया था। जितना अधिक हम जानेंगे वे हमारे लिए आवश्यकता के अनुसार सामर्थ्य प्रदान कर सकता है। इस साल के शुरू में मैंने एक गिरजे के वयस्क युवा से पूछा कि वे हर सप्ताह यीशु की कही हर बात का और किए गए कामों का जैसे लिखे गए हैं का अध्ययन करके उसके समय का एक भाग ज्ञान का देगा। मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ। यीशु मसीह के बारे में आत्मिक प्रशंसा पत्र ट्रिपिकल गाइड में है, उनका व्यक्तिगत पाठ्यक्रम बन जाएगा। मैंने वह चुनौती दी क्योंकि मैं स्वयं को स्वीकारा था। मैं पढ़ता और प्रत्येक आयत को अंडरलाइन करता जो यीशु मसीह के बारे में हवाला देती, जैसे ट्रिपिकल गाइड के अंतर्गत 57 उपशीर्षक की सूची में है। जब मैंने उस रुचि भरे अभ्यास को समाप्त किया, मेरी पत्नी ने पूछा कि मेरे ऊपर उसका क्या प्रभाव पड़ा। मैंने उसे बताया मैं एक विभिन्न पुरुष हूं। मैंने उसके प्रति एक नया समर्पण पाया, जैसे मैंने मॉर्मन की पुस्तक में उद्धारकर्ता के स्वयं उसके नाश्वर सेवकाई के बारे में दिए गए बयान को पढ़ा था। उसने घोषणा की कि मैं संसार में अपने पिता की इच्छा पूरी करने आया क्योंकि मेरे पिता ने मुझे भेजा था और मेरे पिता ने मुझे इसलिए भेजा कि मैं क्रूस पर उठाया जाऊं। अंतिम दिन के संतों के रूप में हम उसकी सेवकाई को यीशु मसीह के प्राशित के द्वारा के रूप में संदर्भ करते हैं जो पुनरुत्थान को संभव के लिए वास्तविकता में बदलती है और अनंत जीवन को संभव करता है उसके लिए जो अपने पापों का पश्चाताप करते हैं और जरूरी धर्म विधियां और अनुबंधियों को ग्रहण कर पालन करते हैं। यह सिद्धांतिक तौर पर प्रभु के प्राश्चित बलिदान के बारे में बोलना अधूरा होगा कहावत को छोटा करने के द्वारा, जैसे कि प्राश्चित या प्राश्चित की सामर्थ को सक्षम करने से या प्राश्चित को लागू करने से या प्राश्चित के द्वारा समर्थ पाने से। इन वर्तमान के भावों से वास्तव में खतरा होगा विश्वास के गलत निर्देश द्वारा घटना को करने से, जैसे यदि हमारे स्वर्गीय पिता और उसके पुत्र यीशु यीशु मसीह के स्वतंत्र योग्यता से उनकी मौजूदगी में जीने से। पिता के महान अनंत योजना के अंतर्गत यह उद्धारकर्ता ही है जिसे सफर करना पड़ा था। वह उद्धारकर्ता ही था जिसने मौत के बंधन को तोड़ा था। वह उद्धारकर्ता ही था जिसने हमारे पापों, उलझनों और धब्बों को हमारे पश्चाताप करने की शर्त पर भुगतान किया। वह उद्धारकर्ता ही था जिसने हमारे शारीरिक और आत्मिक मृत्यु से छुड़ाया था। किसी अन्यति रूपी अस्तित्व को प्रायश्चित नहीं कहते हैं जिस पर हम राहत, चंगाई, क्षमादान या सामर्थ्य के लिए कह सके। यीशु मसीह स्वतंत्रता है। पवित्र शास्त्र जैसे प्रायश्चित और पुनरुत्थान वर्णन करता है कि यीशु ने क्या किया था पिता की योजना के अनुसार, ताकि हम इस जीवन को आशा के साथ जी सकें और आने वाले संसार में अनंत जीवन पाए। उद्धारकर्ता के प्रायश्चित बलिदान का सारी मानव जाति इतिहास में मध्य क्रिया है को बेहतर तरह से समझा और प्रोत्साहित किया जाता है कि जब हम प्रभावकारी और स्पष्टता से उसे उसके साथ जोड़ते हैं। उद्धारकर्ता की महत्वपूर्ण सेवाकाई पर भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ के द्वारा जोर दिया जाता है, जो सशक्त रूप से घोषणा करते हैं कि हमारे धर्म के मौलिक नियम प्रेरितों और भविष्यवक्ताओं की गवाही है यीशु मसीह के लिए कि वह मर गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन जी उठा, स्वर्ग में उठा लिया गया और बाकी सारी चीजें जो हमारे धर्म से संबंधित है वही उससे प्रशिष्ट है। यही भविष्यवक्ता की गहन व्याख्या है कि जो भविष्यवक्ताओं, दिव्यदर्शियों और प्रकटीकर्ताओं को प्रेरणा प्रदान करता है और उनकी गवाही को चिन्ह 2000 साल की प्रभु के जन्म की सालगिरह को मनाने देता है। वो ऐतिहासिक गवाही का शीर्षक जीवित मसीह है। बहुत सौ सदस्यों ने इसे याद किया है, अन्य हालांकि जानते हैं ये है। यदि आप यीशु मसीह के बारे में और अधिक सीखने के लिए दृढ़ते हैं, मैं आपसे निवेदन करता हूँ जीवित मसीह का अध्ययन करें। जैसे हम अपना समय उद्धारकर्ता और उसके प्रायश्चित बलिदान के विभिन्न के विषय जानने में व्यतीत करते हैं, हम अन्य उस दूसरी उसकी सामर्थ्य की कुंजी के तत्व का करने में भाग लेते हैं। हम उसमें विश्वास और उसका अनुसरण करने का चुनाव करते हैं। सच्चा यीशु मसीह का शिष्य इच्छा अनुसार दृढ़ता से खड़ा, ऊंचा बोलता और संसार के लोगों से भिन्न होता है। वह साहसी, सामर्थी और उत्साहित होते हैं। मैंने ऐसे शिष्यों से हाल ही में मेक्सिको के कार्य करने के दौरान जाना था, जहां मैं सरकारी अफसरों से वैसे ही अन्य धर्म संस्थाओं के मार्गदर्शकों से मिला था। प्रत्येक ने मेरा धन्यवाद किया। हमारे शुरुआत सदस्यों और सफलतापूर्ण प्रयास उनके देश में मजबूत विवाह और परिवारों को बचाने के लिए किया था। यहाँ कुछ आसान या खुद ब खुद नहीं होता समर्थ्य शिष्य बनने के लिए। हमारा ध्यान उद्धारकर्ता और उसके सुसमाचार से जोड़ने पर होना चाहिए। ये मन की दृढ़ता से उसे हर विचारों में देखने का प्रयास करते हैं, परंतु जब हम करते हैं हमारे शक और डर मंडराने लगते हैं। हाल ही में मैंने एक निर्भय युवती लोरा से सीखा था। उसे क्षेत्र प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए उसके उच्च स्कूल से उसी शाम वह स्टेक सहायता संस्था सभा में भाग लेने के लिए वचनबद्ध थी के लिए निमंत्रण आया था। जब उसने संघर्ष को जाना और प्रतियोगिता अफसरों को समझाया कि उसे पहले प्रतियोगिता छोड़ने की जरूरत है एक महत्वपूर्ण सभा में जाने के लिए, उसे बताया गया उस अयोग्य कर दिया जाएगा यदि वह ऐसा करती है। तो इस अंतिम दिन की लॉरा ने क्या किया था? उसने सहायता संस्था सभा में भाग लेने के लिए अपना वचन रखा था, जैसे वादा किया था, क्षेत्र प्रतियोगिता से बाहर होकर। जब उसके निर्णय के बारे में पूछा गया, वह साधारण सा जवाब देती है, अच्छा गिरजा अति महत्वपूर्ण है, क्यों नहीं है? यीशु मसीह में विश्वास हमें वो बातें करने को प्रेरित करता है हम जिसे कर नहीं सकते हैं। विश्वास जो कि हमें कार्य करने को प्रेरित करता है, उसकी सामर्थ्य में होकर हम वो काम करते हैं। हम उद्धारकर्ता की सामर्थ्य को अपने जीवन में और अधिक बढ़ाते हैं जब हम पवित्र अनुबंध बनाते हैं और उस अनुबंधों का पालन स्पष्टता से करते हैं। हमारे अनुबंध हमें उससे बंधाते हैं और हमें ईश्वरीय शक्ति देते हैं। जैसे विश्वासी शिष्य होना, हम बैप्टिज्म के पानी में पश्चाताप करते और उसका अनुसरण करते हैं। हम अनुबंध के साथ रास्ते चलकर विशेष धर्म विधियों को प्राप्त करते हैं और आभार पूर्ण होकर परमेश्वर की योजना को आशीष प्रदान कर बढ़ती हैं उन प्रभुजों के लिए जो उनके इस नाश्वर जीवन में बिना मौका पाए मर गए। अनुबंध पुरुष और स्त्री को उनके समय को संसार में बिना धब्बों के साफ रखने के तरीकों को खोजने में व्यस्त रखते हैं ताकि उन्हें कोई भी उद्धारकर्ता के समर्थ को पाने से रोक ना सकेगा। एक विश्वासी पत्नी और माँ ने हाल ही में लिखा था, कोट, यह क्लेश और संकट में समय है। हम कितने आशीषित हैं, हमारे पास परमेश्वर की उद्धार की योजना का बढ़ने ज्ञान के लिए और जीवित भविष्यवक्ता प्रेरितों और मार्गदर्शकों से प्रेरित मार्गदर्शन के लिए जो मदद करते हैं इस समुद्री तूफान से सुरक्षित निकलने में। हमें अपनी सुबह के रेडियो को चलाने की आदत को खत्म करना है, बजाय हमें अब से अपने मोबाइल फोन पर जनरल सम्मेलन की वार्ताओं को हर सुबह सुनना है जैसे हम अगले दिन की तैयारी करते हैं। कोट क्लोज। एक अन्य तत्व उद्धारकर्ता की सामर्थ्य को हमारे जीवनों में उसके पास विश्वास में ऊपर उठाने में समीप लाता है। ऐसी नजदीकी को मेहनती ध्यानपूर्ण प्रयास करने की आवश्यकता होती है। क्या आपको स्त्री की बाइबल की कहानी याद है जो 12 साल से दुर्बल करने वाली बीमारी से ग्रस्त थी? उसने उद्धारकर्ता पर महान विश्वास का अभ्यास किया था। बताती है, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चुंगी हो जाऊंगी। वह विश्वासी केंद्रित स्त्री ने जितना उसे आगे बढ़ने की जरूरत थी उसकी समर्थ को पा सकने की उसका शारीरिक खींचवा उसके बढ़ने का प्रतीक था। हम में से बहुत से हृदयों की गहराई से रोते हैं इस स्त्री के भिन्न शब्दों के लिए। यदि मैं आत्मिकता में अपने जीवन में उद्धारकर्ता के समीप जाने के लिए बढ़ सकता, मैं जान पाता कि वैसे कैसे हृदय रूपी छिद्रों की परिस्थिति को संभाला जाता है। मैं जान जाता क्या करना होता है और मेरे पास उसे करने की समर्थ होती। जब आप प्रभु की समर्थ के लिए अपने जीवन में उसी भावना के ऊपर पहुंचते हैं, वैसे ही जैसे कि डूबते हुए व्यक्ति को जब सांस लेने में मशक्कत करनी पड़ती है, यीशु मसीह की सामर्थ आपकी होगी। जब उद्धारकर्ता जानता है आप ऊपर उस तक सच में पहुंचना चाहते हैं, जब वह महसूस कर सकता है कि आपके हृदय की महान मनोकामना उसकी समर्थ को अपने जीवन में लाने की है, आपको पवित्र आत्मा द्वारा रास्ता दिखाया जाएगा, वैसा ही जैसे आपको क्या करने की आवश्यकता है। जब आप किसी भी चीज से परे होकर आत्मिकता बढ़ेंगे, आपने कभी भी ऐसा पहले ना किया हो, तब आपकी समर्थ आप में बहेगी और फिर आप समझ पाएंगे शब्दों के गहरे अर्थ। और हम स्तुति गीत गाते हैं, द स्पिरिट ऑफ गॉड।
The veil or the earth is beginning to burst. The gospel of Jesus Christ is filled with.
यीशु मसीह का सुसमाचार उसकी सामर्थ से भरा हुआ है, जिसे हर कोई परमेश्वर के बेटे या बेटियां ईमानदारी से खोजते हैं के लिए उपलब्ध है। ये मेरी गवाही है कि जब हम उसकी सामर्थ को अपने जीवन में लाते हैं, दोनों वह और हम आनंद मनाएंगे। एक विशेष गवाह के रूप में मैं घोषणा करता हूं कि परमेश्वर जीवित है, यीशु ही मसीह है। धरती पर उसके गिरजे को पुनर्स्थापित किया गया था। परमेश्वर के भविष्यवक्ता इस पृथ्वी पर आज थॉमस एस मॉन्सन है, जिसका मैं अपने पूरे हृदय से समर्थन करता हूँ। मैं गवाही देता हूँ अपने प्रेम भरे भाव के और आप सभी के लिए आशीष के साथ यीशु मसीह के नाम से, आमीन।
हमारे प्रिय स्वर्गीय पिता, इस महासम्मेलन के अंतिम सत्र में हैं, हम अपना आपका आभार प्रकट करते हैं आपके पुत्र यीशु मसीह के लिए, जो कि संसार की ज्योति है, हमारे जीवन की ज्योति। हम परमेश्वर आपका धन्यवाद देते हैं प्रेरित मैसेज संदेशों के लिए जो हम दिए गए हैं इस अवसर पर। अब हमारे प्रिय स्वर्ग के पिता, हम आपसे मांगते हैं हमें मदद कीजिए ताकि हम इन शिक्षाओं को अपने जीवन में अप्लाई कर सकें, सिद्धांतों सुसमाचार के जो कि हमको याद दिलाए गए हैं दुख के, हम इस अवसर पे जो हमें याद दिलाए, हम आपसे पूछते हैं परमेश्वर, तो आशीष दें हमें अपने बच्चों को जो कि जीवन की कठिनाइयों से गुजर रहे हैं और जो उन चुनौतियों का सामना कर रहे हैं, बीमारियों से जूझ रहे हैं, अत्याचार सह रहे हैं। प्रिय पिता, हम आपको से प्रेम करते हैं, हम आपसे मांगते हैं हमें आशीष दीजिए, हमारे प्रचारकों के साथ हो जी, ताकि वे आपके काम को जारी कर सकें और पुनः स्थापित सुसमाचार को पढ़ा सके। ये सब कुछ हम कहते हैं पवित्र यीशु मसीह के नाम में, आमीन।
This has been a broadcast of the 187th annual general.
ये अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के गिरजे का 188वां वार्षिक महासम्मेलन था। इसके वक्ता गिरजे के जनरल अधिकारियों और पदाधिकारियों में से चुने गए थे। इस सत्र का संगीत मॉर्मन मंडप गायक मंडली द्वारा उपलब्ध कराया गया था। इसका प्रसारण बॉनेवर डिस्ट्रीब्यूशन द्वारा सार्वजनिक सेवा के रूप में किया गया। बिना लिखित अनुमति के इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग, नकल, प्रतिलेखन या अन्य उपयोग वर्जित है।